परम आदरणीय भिक्षु संघ, धर्म प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, धर्म गंगा के पावन प्रवाह का ये पांचवां दिन, आओ एक बार फिर दोहरा लें और समझ लें कि शुद्ध धर्म क्या है, और फिर समझ लें कि उसे कैसे धारण किया जाता है। पिछले चार दिनों में इसी पर चर्चा होती रही, शुद्ध धर्म के पालन हर कोई कर सकता है जो सार्वजनीन है, किसी एक संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं, किसी एक जात बंधा हुआ नहीं, किसी एक वर्ण से बंधा हुआ नहीं, किसी एक देश से बंधा हुआ नहीं, जो सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, जो कुदरत का कानून है, जो विश्व का विधान है, जो निसर्ग के नियम है, जो रित है, जो सब पर लागू होता है, एक जैसा लागू होता है, किसी का पक्षपात नहीं करता, उसे समझते हुए प्रकृति के उन नियमों के अनुसार अपने जीवन को कैसे ढालें। जो जो व्यक्ति अपना जीवन प्रकृति के इन नियमों के अनुसार ढालने लगा, कुदरत के कानून के अनुसार ढालने लगा, रित के अनुसार ढालने लगा, वो धर्म का जीवन जीने लगा। बौद्ध धर्म का नहीं, जैन धर्म का नहीं, हिंदू धर्म का नहीं, ईसाई धर्म का नहीं, मुस्लिम धर्म का नहीं, धर्म का जीवन जीने लगा तो बड़ा सुखियारा हो गया, उसको जीना आ गया, जीने की कला आ गई। तो शुद्ध धर्म, उस पर चलने के लिए तीन चरण, तीन कदम, तीन पांवड़े। पहले को कहा शील, सदाचार, माने शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो। ये सदाचार का जीवन सबके लिए कल्याणकारी है, इस पर बौद्धों की मोनोपोली नहीं, हिंदुओं की मोनोपोली नहीं, कि जैनियों की मोनोपोली नहीं, किसी की मोनोपोली नहीं, हर आदमी ऐसा सदाचार का जीवन जी सकता है, परिश्रम करे, प्रयत्न करे तो जी सकता है। इसके लिए क्या परिश्रम करना होता है, तो दूसरा कदम समाधि, मन को अपने वश में कर लेना। मन को वश में कर भी लिया, फिर भी गहराइयों में विकार जमा है, बहुत विकार जो इकट्ठे कर रखे हैं, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, भय है, अहंकार है, भरे पड़े हैं। तो जब तक ये खजाना भरा पड़ा है, तब तक कोई न कोई विकार सिर पर चढ़ेगा, फिर हम अपने मन के मलकियत खो देंगे। जब विकार जागा और सिर पर सवार हो गया तो होश खो बैठे। तो इसलिए तीसरा कदम प्रज्ञा। प्रज्ञा माने प्रत्यक्ष ज्ञान, अपनी अनुभूति से जो ज्ञान जागा, और काहे का ज्ञान, अपने भीतर की जो सच्चाई है उसका ज्ञान, वो जो ज्ञान जागा, उस ज्ञान से अपने भीतर सच्चाई देखते देखते देखते, भीतर जो ये कूड़ा करकट इकट्ठा कर रखा है, न जाने कब का इकट्ठा कर रखा है, उसको निकालने का तरीका मिल गया। जितना जितना निकल गए उतने उतने निर्मल हो गए, सारा निकल गया, बिल्कुल निर्मल हो गए। बस ये शील, समाधि, प्रज्ञा कोई भी अपना सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चित्त को वश में करना किसी एक जाति, किसी एक संप्रदाय की मोनोपोली नहीं होती। अपने भीतर सच्चाई का दर्शन करके मन को निर्मल कर लेना किसी एक जाति, किसी एक संप्रदाय, किसी एक देश, किसी एक बोली भाषा वालों की मोनोपोली नहीं होती, कोई भी कर सकता है। और काम करने का जो तरीका है वो भी ऐसा सार्वजनिक है, ऐसा वैज्ञानिक है कि किसी को कोई अड़चन आती नहीं। न हिंदू को कोई कठिनाई होती है, न मुसलमान को होती है, न जैन को होती है, न ईसाई को होती है, न बौद्ध को होती है, किसी को कोई कठिनाई नहीं होती। चित्त को एकाग्र करने के लिए हमने सांस का सहारा लिया, सांस भी स्वाभाविक सांस, जैसे आया वैसे जान लिया, जैसे गया वैसे जान लिया। तो सांस तो कोई बौद्ध होता नहीं, जैन होता नहीं, ईसाई होता नहीं, मुसलमान होता नहीं, सांस तो सांस है, सबका सांस एक सा है। अपने सांस को देखे, जैसा है वैसा देखे, इसमें किसी को कोई कठिनाई नहीं होती। और प्रज्ञा जगाने के लिए अपने शरीर पर संवेदना कैसे हो रही है, गर्मी है कि सर्दी है कि भारी है कि हल्का है कि तरंग है कि धड़कन है कि सुरसुराहट है, अरे सबको एक जैसी होती है। हिंदुओं के शरीर की गर्मी अलग, मुसलमानों के शरीर की गर्मी अलग, हिंदुओं की धड़कन अलग, मुसलमानों की अलग, बौद्धों की अलग, ऐसा तो होता नहीं ना। तो ये आलंबन भी हमने सार्वजनिक आलंबन ही चुना। और इसको देखते देखते अपने भीतर तन और मन, शरीर और चित्त, इन दोनों का परस्पर कैसे इंटरेक्शन चल रहा है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, कैसे विकारों का उद्गम हो रहा है और कैसे उसका संवर्धन होते 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 वो सिर पर चढ़ जाते हैं, और कैसे उनको देखते चले जाएं तो उनकी ताकत कम होते 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 वो निकल जाते हैं। ये बात सब पर लागू होती है, ये केवल हिंदुओं की बात नहीं, केवल बौद्धों की बात नहीं, केवल जैनियों की बात नहीं। तो धर्म तभी शुद्ध होता है जब वो किसी संप्रदाय के साथ बंधा हुआ नहीं होता। संप्रदाय के साथ बंध गया तो संप्रदाय प्रमुख हो जाएगा, धर्म गौण हो जाएगा। तो शील, समाधि, प्रज्ञा, जिस तरह से उसका अभ्यास करना चाहिए वैसे अभ्यास करेंगे तो किसी संप्रदाय में दीक्षित होने की जरूरत नहीं है। धर्म में दीक्षित होना है, धर्मवान बनना है, धार्मिक बनना है, धर्मिष्ठ बनना है, धर्मचारी बनना है, धर्मविहारी बनना है। किसी पर एहसान नहीं कर रहे, अपने भले के लिए, अपने मंगल के लिए, अपनी सुख शांति के लिए। जो आदमी स्वयं अपने भीतर सुख शांति का जीवन जीने लगा वो औरों के लिए सुख शांति का ही निर्माण करेगा। जो भीतर से दुखियारा है, बहुत जल रहा है, बहुत व्याकुल है, वो औरों के लिए व्याकुलता का ही निर्माण करेगा, औरों को सुख शांति कैसे देगा। तो धर्म पहला ये सिखाता है कि स्वयं कैसे सुख शांति का जीवन जिए, और जैसे जैसे सुख शांति का जीवन जीने में निपुण होते चले गए वो तब होगा जब मन के मैल निकलेंगे। तो जितना जितना मन का मैल निकलता चला गया देखेंगे सद्गुण आने लगे मन में, मैत्री का भाव आने लगा, करुणा का भाव आने लगा, मुदिता का भाव आने लगा, समता का भाव आने लगा, सद्भावना का भाव आने लगा, परसेवा का भाव आने लगा, परोपकार का भाव आने लगा। तो देखेगा कि इससे औरों का भी कल्याण होने लगा, अपना भी कल्याण, औरों का भी कल्याण, बस जीना आ गया, जीने की कला आ गई। कैसे स्वयं सुख शांति से जिए, कैसे औरों को भी सुख शांति से जीने में सहायक हो जाए। तो फिर एक बार दोहरा लें, शील, सदाचार, विपश्यना के मार्ग पर आगे चलोगे। विपश्यना के माने कोई संप्रदाय नहीं है, विशेषेन पश्यतीति विपश्यना, विशेष रूप से देखता है अपने भीतर। रूप नहीं देखता, रंग नहीं देखता, रोशनी नहीं देखता। पुरानी भाषा में देखने का मतलब होता था अनुभव करना, ज्ञान के चक्षु से, प्रज्ञा के चक्षु से अनुभव करता है। तो अनुभव करता है तो इस बात को जान लेता है कि भाई अगर मैं शील सदाचार का जीवन जीता हूं तो अपना भला करता हूं, शील सदाचार का जीवन नहीं जीता हूं तो अपना बुरा करता हूं। औरों का बुरा तो पीछे होता है, पहले मेरा बुरा होना शुरू हो जाता है। तो जब तक बच्चा है तब तक तो कहते हैं कि तुम शील सदाचार का जीवन जियोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, तुम शील सदाचार का जीवन नहीं जियोगे तो मरने के बाद नरक मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, धर्म के क्षेत्र में उम्र बढ़ती है, ये शरीर की क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, धर्म के क्षेत्र में उम्र बढ़ती है तो होश आता है, भीतर देखने लगता है तो देखता है ये स्वर्ग और नरक हमारे भीतर ही है भाई, और अभी भुगतना पड़ रहा है, मरने के बाद नहीं। जैसे ही शील सदाचार को तोड़ा, हत्या की कि चोरी की कि व्यभिचार किया कि झूठ बोला कि गाली दी, इस तरह का कोई भी काम शरीर या वाणी से किया कि जैसे भीतर नरक की आग जाग पड़ी। इतना बेचैन, इतना व्याकुल, क्योंकि अपने भीतर देखना सीखता ही नहीं तो बेचारा जानता ही नहीं कि भीतर क्या होने लगा। अब इस विद्या से अपने भीतर जानने लगा, ओ कैसा नरक का जीवन है, शील सदाचार तोड़ने पर कैसा नरक का जीवन जी रहा हूं। और जब शील सदाचार कायम रखता है, किसी की कोई हानि नहीं करता तो मन में विकार नहीं जगाता, तो जब मन में विकार नहीं जगाता तो देखता है कैसा स्वर्गीय सुख भीतर है, अरे कैसी शांति है। विकार नहीं जागे तो शांति ही शांति, विकार जागे तो अशांति ही अशांति। कुदरत के बंधे बंधाए नियम है, प्रकृति के बंधे बंधाए नियम है, इसमें हिंदू पना क्या करेगा, इसमें बौद्ध पना क्या करेगा, इसमें जैन पना क्या करेगा, नियम है। और वो नियम सब पर लागू होते हैं। खूब समझ में आने लगेगा कि शील का पालन क्यों करना है, ऐसा खूब समझ में आने लगेगा। समाधि के क्षेत्र में जब उतरेगा तो खूब समझेगा कि ये सांस का काम क्यों जरूरी है, और किसी तरह से भी तो अपने मन को एकाग्र कर सकता था। तो बात समझ में आएगी कि धर्म के रास्ते जिसे चलना है, शुद्ध धर्म के रास्ते, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म की बात नहीं करता, धर्म शुद्ध धर्म के रास्ते जिसे चलना है उसको इसलिए चलना है कि अपने भीतर की सच्चाइयों को, अपने बारे में जो सच्चाई है उनको अनुभूतियों के स्तर पर जान ले। तो अनुभूतियों के स्तर पर जानने के लिए कोई टूल चाहिए, कोई हथियार चाहिए। ये सांस बहुत बड़ा हथियार बन जाएगा और आगे जाकर के ये सांस हमारे मन को हथियार बना देगा। अगर हम सांस की कसरत करते रह जाते, इतना तेज सांस लिया फिर रोका, फिर इतना छोड़ा फिर रोका, तो सांस की कसरत हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बड़ी कामयाब होती। लेकिन हमको ये काम नहीं करना, वो अपनी जगह अलग, वो कसरत अलग करें, उससे कोई दुश्मनी नहीं है, उससे कोई बैर नहीं है, उससे कोई विरोध नहीं है। हम ये कर रहे हैं कि अपने स्वभाव से क्या हो रहा है हमारे भीतर, तो इसलिए हमने सांस का सहारा लिया। सांस का सहारा लेते 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 जगह छोटी कर ली, थोड़ी सी दूर में ही मन को टिकाया। मन जितनी छोटी दूर में टिका होगा, आलंबन जितना सूक्ष्म हो जाएगा और चित्त जितनी देर तक उस आलंबन पर लगा रहेगा उतना सूक्ष्म होता चला जाएगा, तीक्ष्ण होता चला जाएगा, बड़ा पियर्सिंग, बड़ा पेनिट्रेटिंग, बड़ा शार्प, बड़ा सेंसिटिव। ये प्रकृति का नियम है। तो इसलिए हमने सांस का सहारा लिया, छोटी सी जगह का सहारा लिया, उसे फैलाया नहीं, दूर तक फैलाया नहीं। इस रास्ते चलने वाला आदमी बड़ा सजग रहेगा कि 3 दिन तक जब उसे सांस का काम करना है तो बाकी और जो कुछ प्रकट हो शरीर पर या मन पर उसको महत्व नहीं देगा। नहीं तो अभी यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, कभी यहाँ भागा, कभी यहाँ भागा, यहाँ कुछ हो गया, वहाँ कुछ हो गया, अरे तो समाधि पुष्ट कैसे होगी भाई, और मन तीक्ष्ण कैसे होगा, सूक्ष्म कैसे होगा, बींधने वाला कैसे होगा, पैरने वाला कैसे होगा। तो एक ही स्थान पर, बाकी जगह जो होता होता रहे, हमसे कोई मतलब नहीं है। इस समय हम समाधि का काम कर रहे हैं तो एक ही छोटे स्थान पर हम जान रहे हैं सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इसका लाभ ये हुआ कि 3 दिन होते होते हमारा मन इतना शार्प हो गया, इतना सेंसिटिव हो गया, इतना संवेदनशील हो गया कि अब यहाँ जो घटना घट रही है उसको महसूस करने लगा। बस प्रज्ञा जागने लगी, तो अगला कदम प्रज्ञा का, प्रज्ञा का। कैसी प्रज्ञा है ये, रितंभरा प्रज्ञा कहा गया। रितंभरा, रित से भरी हुई, रित माने जो कुदरत का कानून है, जो विश्व का विधान है, उसको खूब अच्छी तरह से समझाने वाली ऐसी प्रज्ञा। और बुद्धि से समझाने वाली नहीं, भावावेश से, श्रद्धा से समझाने वाली नहीं, अनुभूति से समझाने वाली, इसीलिए प्रज्ञा कहलाती है। प्रत्यक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान नहीं है। किसी दूसरे का ज्ञान हो और हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं, तो प्रज्ञा नहीं हुई, वो तो ज्ञान हुआ। किसी ने कहा हमने मान लिया, या हमने अपनी बुद्धि लगाई, तर्क लगाया, चिंतन किया और उससे मान लिया, अपना अनुभव नहीं है। केवल तर्क हमारा ये कहता है, बुद्धि हमारी ये कहती है, अनुभव नहीं है, तो वो प्रज्ञा नहीं हुई। प्रज्ञा होगी प्रत्यक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान से हमको सच्चाई जैसी है वैसी है, यथाभूत, जैसी है वैसी है ऐसा ज्ञान जागेगा, यथाभूत ज्ञान यथाभूत दर्शन। अनुभूति हो रही है, दर्शन का मतलब रूप देखना नहीं। दर्शन शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है फिलॉसफी, वो तो ले डूबता है धर्म को। एक अर्थ होता है रूप देखना, वो भी बहुत बड़ा बाधक हो जाता है। एक अर्थ होता है अनुभव करना, स्वयं अनुभव कर रहा है, उस अनुभव से जो ज्ञान जाग रहा है। यथाभूत, इस क्षण जो घटना घटी वो यथाभूत, उसका अनुभव किया, दर्शन किया और उससे जो ज्ञान जागा। क्या ज्ञान जागेगा अनुभव से? इस सारे शरीर में क्या हो रहा है, ये सारा शरीर किस प्रकार प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है। पहले तो पुस्तकों में सुना, पढ़ा, प्रवचनों में सुना, या आपने बुद्धि लगाई कि सब अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, ये सारा भौतिक जगत नश्वर है, भंगुर है। वो तो सुनी सुनाई बात थी ना, या बुद्धि विलास की बात थी ना। अब अनुभव से जानने लगा अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। अरे इसके प्रति क्या राग करें रे, इसके प्रति क्या द्वेष करें रे। एक बहुत बड़ी घटना घट गई भीतर। जब तक पराए ज्ञान के सहारे चल रहा था तब तक अंधा था, लकड़ी के सहारे चल रहा था। अब लकड़ी फेंक दी, अब अपने ज्ञान पर चल रहा है तो मुक्ति का रास्ता खुलने लगा, मुक्ति का दरवाजा खुलने लगा, क्योंकि स्वयं अनुभव करने लगा। अब सच्चाई को यथाभूत देखना, यथाभूत समझना आसान हो गया, नहीं तो देख ही नहीं पाए। पराए भरोसे खड़ा है, उसने जो कहा हम मान रहे हैं, हमारे गुरु महाराज ने ऐसे कहा, हमारे भगवान बुद्ध ने ऐसे कहा, हमारे महावीर ने ऐसे कहा, हमारे किसी कृष्ण ने ऐसे कहा, हमारी गीता ये कहती है, बाइबल ये कहती है, अमुक ये कहती है, सारा जीवन उसी में बीत गया। अरे वो तो सब कहते हैं, तुझको क्या अनुभव हुआ, तेरा ज्ञान कहाँ जागा? तो जब तक अपना ज्ञान नहीं जागे, अपनी बुद्धि नहीं जागे, तब तक अंधेरा ही अंधेरा है। अपना ज्ञान जागता है, प्रज्ञा जागती है, तो जो बात जैसी है ऐसा प्रतीत हो रहा है वो नहीं, जो बात सचमुच जैसी है वैसे उसका अनुभव होने लगता है। प्रज्ञा शब्द का एक और अर्थ पकारेन ज्ञानेति इति पन्या, प्रकार प्रकार से जानता है, एक ही प्रकार से नहीं। किसी भी वस्तु को हम एक एंगल से भी देख सकते हैं, एक आयाम से भी देख सकते हैं और 100 आयाम से देख सकते हैं, भिन्न भिन्न एंगल से देख सकते हैं। जब एक एंगल से देखते हैं किसी वस्तु को तो उसका एकांगी दर्शन होता है, और अनेक एंगलों से देखते हैं तो उसका पूर्ण दर्शन होता है, सर्वांश दर्शन होता है, एकांश दर्शन नहीं। और एकांश दर्शन होता है तो बड़ी भ्रांति होती है, बहुत भ्रांति होती है। एक उदाहरण से समझें, 5 जन्म के अंधे, उन 5 जन्म के अंधों को हाथी के पास खड़ा कर दिया और कहा बताओ हाथी कैसा होता है। बेचारे अंधे हैं, कैसे जाने कैसा होता है, तो हाथ से टटोल टटोल के जानने की कोशिश की हाथी कैसा होता है। एक के हाथ में हाथी की टांग आ गई, उसको टटोल टटोल के कहता है मैं जान गया हाथी कैसा है। कैसा है रे? खंबे जैसा है, उसके लिए हाथी खंबे जैसा है। दूसरे के हाथ में उसकी पूंछ आ गई, उसको देख टटोल टटोल, अरे नए खंबे जैसा नहीं है रे, हाथी तो झाड़ू जैसा है, ब्रश जैसा है, उसके लिए ब्रश जैसा है, झाड़ू जैसा है। तीसरे के हाथ में उसका दांत आ गया, अरे खूंटे जैसा है। पांचों ने अपनी अपनी व्याख्या, अपना अपना निर्णय दे दिया। पांचों सही हैं, लेकिन पांचों के पांचों गलत हैं, क्योंकि एकांशी दर्शन किया, पूर्ण दर्शन नहीं किया। पूर्ण दर्शन नहीं किया तो धोखा ही धोखा, और हम सारे जीवन इस धोखे में बिता देते हैं। जब से जन्मे हैं आंख खुली है, बाहर देखा, बाहर देखा, बहिर्मुखी बहिर्मुखी, ऐसा कहा, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। अरे ये सब तो बाहर हुआ, लेकिन जैसे ही बाहर हुआ तेरे भीतर क्या होने लगा? अपने अंदर आंख नहीं ले गए कभी, बाहर ही बाहर, बाहर ही बाहर। अब इस विद्या द्वारा अंतर्मुखी भी होना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ऐसी अवस्था आएगी हर एक आदमी के भीतर घुस करके उस दृष्टिकोण से भी देखना शुरू कर देंगे। पहले तो ये कि किसी बात को उसकी पूर्णता में देखने के लिए केवल बाहर ही देख के नहीं रह जाएं, अपने भीतर भी देखें। बाहर किसी ने गाली दी, मैंने पागल की तरह बदले में गाली दे दी, सही है, बिल्कुल सही बात है। उसने गाली दी, मैंने भी गाली दी, लेकिन उसने गाली दी और मैंने गाली दी, इस बीच में बहुत घटना घट गई भीतर। कितनी घटनाएं घट गई वो देख ही नहीं पाया। अरे उसने गाली दी, उस वक्त क्या हुआ, मेरे भीतर तरंग जैसी आई और वो तरंग अप्रिय लगी, किसी ने उसका मूल्यांकन किया, ये गाली है, ये बहुत बुरी है, बड़ी दुखद तरंग चलने लगी, तो किसी एक बावले अंश ने, मानस के अंश ने प्रतिक्रिया करनी शुरू की, ये बहुत बुरा है, ये अच्छा नहीं, तब वाणी निकली गाली की। इस बीच में इतनी घटना घटी हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हम समझे जा रहे हैं कि जो व्याकुलता आई वो गाली की वजह से आई। अंदर देखेंगे तो पता लगेगा जो व्याकुलता आई मेरे भीतर जागे हुए विकार की वजह से आई, और जो विकार जागा वो मेरी इस संवेदना की वजह से जागा। ये बात जिस दिन समझ में आने लगेगी, अनुभूति से, इन प्रवचनों से नहीं, कुछ पल ले नहीं पड़ेगा, केवल प्रवचन सुन करके सिर हिला लिया कि बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ी ठीक बात कही, कुछ नहीं बल्ले पड़ा। बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंधे आदमी को कोई कहे कि ये काला है या सफ़ेद है, तो कहेगा हाँ आप कहते हो तो बिल्कुल ठीक है, काला ही होगा सफ़ेद ही होगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अनुभूति पर जिस दिन उतर जाएगी, समझो एक ऐसी घटना घट गई भीतर, एक नया जीवन मिल गया भीतर, एक नया रास्ता मिल गया, जीना आ गया, जीने की कला आ गई। और बिल्कुल यही होगा, आरंभ करते हुए तो किसी किसी को एक दिन, किसी को दो दिन, किसी को तीन दिन, स्थूल स्थूल संवेदनाएं मालूम होंगी, घनीभूत, जैसे आंख बंद करके बैठे हैं, कहीं पीड़ा शुरू हुई, कहीं भारीपन शुरू हुआ, कहीं तनाव शुरू हुआ, संगठित है, घनीभूत है, एकत्र है, सॉलिडिफाइड है, इंटेंसिफाइड है। लेकिन हम समता के साथ देखते जाएंगे, तुझे भी देखते हैं, चक्कर अपना पूरा किया, फिर से पांव तक चले, चक्कर पूरा, यूं करते करते अपने आप खुलने लगा, खुलने लगा, तरंगे ही तरंगे रह गई। किसी किसी को देर लगती है, तो मानो कहीं घनीभूत पीड़ा है, पीड़ा है, बहुत बड़ी पीड़ा है, और समता के साथ देख रहा है तो पीड़ा है, लेकिन फिर भी उसके भीतर से एक तरंगों की लहर निकल जाएगी। तो पीड़ा जैसे टूट गई, टुकड़े हो गए उसके, पीड़ा पीड़ा जैसी नहीं लगेगी, सिर पर नहीं चढ़ेगी, इस तरह की अवस्था आने लगेगी, तो अपने आप फिर सारी बात समझ में आने लगेगी। एक बड़ी बात ये समझ में आएगी कि ये मानस का ऊपरी ऊपरी हिस्सा, जिसे आज का वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट कहता है ये कॉन्शियस माइंड है, और बाकी का हिस्सा जिसे हाफ कॉन्शियस कहें, अनकॉन्शियस कहें, यह पश्चिमी भाषा की बात है, अपने यहाँ इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल हुए। अपने यहाँ तो कहा गया जो छोटा सा हिस्सा है जिसे वहाँ कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो समझ लो मुश्किल से 5% होगा। वो कॉन्शियस माइंड अपने यहाँ परित चित्त कहा गया, माने परिमित चित्त है, छोटा सा चित्त है, और बाकी सारा बहुत बड़ा चित्त है। वो बहुत बड़ा चित्त वो अंधेरे में है, और ये जो छोटा सा चित्त है यही प्रमुख हो गया है। बाहर कोई बात सुनता है, देखता है, ये करता है, चिंतन करता है, वो सारा ये 5% कर रहा है, तो 95% क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच में इतनी मोटी दीवार है कि इस 5% को पता नहीं कि हमारे भीतर क्या हो रहा है, 95% में क्या हो रहा है इस 5% वाले को कुछ पता नहीं। इसीलिए परित चित्त है, छोटा सा चित्त है, परिमित चित्त है। ये साधना करते करते वो दीवार टूटेगी तो सारा कुछ भीतर मालूम होने लगेगा। अब जो कुछ हो रहा है अंदर वाला चित्त अपने अंदर क्या कर रहा है ये सब महसूस होने लगेगा। क्या करता है वो? उसका एक ही काम है, वो अंधा है। उसको ये इस बात का होश नहीं है कि हमें राग नहीं करना चाहिए, हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, हमें गांठे नहीं बांधनी चाहिए, हमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बड़ा दुख, कुछ नहीं। बिल्कुल अंधा है, उसने अपना एक अंधा स्वभाव बना लिया। क्या स्वभाव बना लिया? उसको जैसे ही कहीं कोई सुखद संवेदना महसूस हुई कि झट राग पैदा करेगा, जैसे ही कोई दुखद संवेदना महसूस हुई कि झट द्वेष पैदा करेगा। ये उसका अनेक जन्मों से स्वभाव चले आ रहा है। कोई अनेक जन्म न माने न माने भाई, इस जन्म में भी, जन्म के साथ ही ये स्वभाव हमारे साथ चल रहा है। सुखद आया कि राग पैदा किया, दुखद आया कि द्वेष पैदा किया। ऊपर ऊपर वाला चित्त, परित चित्त कहता है नहीं, राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, अमुक नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वो नहीं सुनता, उस तक आवाज ही नहीं जाती, बुद्धि की कोई बात सुनने को तैयार नहीं, इसीलिए अंधा है। उसको तो एक ही बात 24 घंटे, इसीलिए पश्चिम का वैज्ञानिक कहता है अनकॉन्शियस माइंड। हम जब उन्हें समझाते हैं तो कहते हैं कुछ अनकॉन्शियस नहीं है, बड़ा कॉन्शियस है वो, उसके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसके पास समझ नहीं है, उसके पास विद्या नहीं है, ये कह सकते हो, कॉन्शियस बहुत है। किस बात के लिए कॉन्शियस है, शरीर में संवेदना यानी सेंसेशन कैसी चल रही है। रात दिन 2400 घंटे यही काम करता है, वो सोता नहीं, वो नहीं सोता। गहरी नींद में सो गए तुम, कौन सो गया? तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सो गया, ये 5% सो गया, बाकी जाग रहा है। और किस बात पर जाग रहा है? सारे शरीर में कहां क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है। गहरी नींद में सोए हो, एक मच्छर ने आके काट लिया, काटते क्या हुआ? एक दुखद संवेदना हुई। कॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जिसको तुम अनकॉन्शियस कहते हो उसे झट मालूम हो गया, बड़ी पीड़ा हुई, तो हाथ से उड़ाता है उस मच्छर को या मार देता है। तिस पर भी वो पीड़ा चल रही है तो खुजलाता है और सोया है, गहरी नींद में सोया है। ऐसा रात में न जाने कितनी बार हुआ, कितने मच्छरों ने काटा। सुबह उससे पूछे कि भाई रात को कितने मच्छरों ने काटा तुम्हें, क्या पता बेचारे को, क्योंकि जिसको पता था वो तो सोया हुआ था और ये 95% प्रतिक्रिया कर रहा था मच्छरों के काटने की, क्या पता उसे। ये काम केवल रात के वक्त सोते सोते नहीं, 2400 घंटे चलता है। एक उदाहरण से समझे, अगर हम विपश्यना नहीं करते होते तो क्या हालत होती। बैठे हैं, बोल रहे हैं, आध घंटा हो गया बोलते हुए, तो ये ऊपर वाला मन जिसे कॉन्शियस माइंड कहें, जिसे परित चित्त कहें, वो अपना काम करते जाता है। अच्छा, अब इतना बोल लिया, अब इस बोलने को यूं मोड़ देंगे, आगे फिर ये बोलेंगे, अब ये समझाएंगे, और देखता जाता है इतने लोग जो सुन रहे हैं, अरे इनके कुछ समझ भी आ रही है, इनके कुछ पल्ले पड़ रहा है कि हम बोले जा रहे हैं, इनका मन कहीं और जा रहा है, घड़ी की ओर देख रहे हैं कि किसी को उबासी आने लगी तो बंद कर, ठीक नहीं। वो सारा काम कॉन्शियस माइंड करता चला जाएगा, अनकॉन्शियस को उससे लेन देन नहीं, जो भीतर वाला चित्त कोई लेन देन नहीं। वो तो आध घंटा हो गई, अब शरीर का इतना वजन पड़ा तो यहाँ कहीं भारी लगा उसे, बदल, हमें नहीं अच्छा लगता, तो यूं कर लेगा थोड़ा सा और बोलते जाएगा, फिर यहाँ भारी हुआ, फिर थोड़ा सा यूं कर लेगा, कभी यूं करेगा, कभी यूं करेगा, कभी यूं करेगा। किसी आदमी को 15-20 मिनट देखते रहो केवल उसकी ओर, 15-20 मिनट होते होते यूं करे, यूं करे, यूं करे, अरे क्या हो गया, उसको खुद को नहीं पता क्या हो गया, मचके जा रहा है, अंदर क्या हो रहा है उसको पता नहीं बेचारे को। करेगा भी पश्चिना तो मालूम होगा, कोई संवेदना जागी वो अप्रिय लगी तो प्रतिक्रिया कर रहा हूं, कोई संवेदना जागी अच्छी नहीं लगी तो प्रतिक्रिया कर रहा हूं, और शरीर में ये सारी हरकतें हो रही हैं, तो दीवार टूट जाएगी। बहुत बड़ा कल्याण होगा जिस दिन ये दीवार टूट जाएगी, उस दिन हम अपने दुखों के उद्गम तक पहुंच जाएंगे, उस दिन हम अपने विकारों के उद्गम तक पहुंच जाएंगे, उस दिन हम अपने बंधनों के उद्गम तक पहुंच जाएंगे। किसी पेड़ को, विशाल पेड़ को, उसकी जड़ें खोदनी शुरू करो, खोदनी शुरू करो, मोटी मोटी जड़ें, मोटी मोटी जड़ें, खोदते जाओ, खोदते जाओ, उस अवस्था पर पहुंच जाओगे जहां बाल जैसी जड़ें हैं। वो बाल जैसी जड़ें हैं, वही प्राण लेती है, वही सैप लेती है और सारे पेड़ को जिंदा रखती है, तो उसका क्या स्वभाव है, वही स्वभाव सारे पेड़ का होगा। ये किसी बोधि प्राप्त व्यक्ति की यही बोधि है, वो इन गहराइयों में जाकर के सच्चाई को समझ लेता है, उद्गम कहाँ हो रहा है, और किसी जंजाल में नहीं पड़ता। हमारा कठिनाई क्या है, हम व्याकुल होते हैं, ये सच्चाई है, ये जीवन जगत की सच्चाई है, सब स्वीकार करेंगे, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, ईसाई हो, नेपाली हो, भारतीय हो, भाई व्याकुल तो हो जाते हैं, अनचाही हो गई व्याकुल हो गए, मनचाही नहीं हुई व्याकुल हो गए, ये तो ऊपर ऊपर का कारण है, भीतर देखेंगे तो कोई विकार जागा, कोई विकार जागा, बड़ी आसक्ति है मनचाही के प्रति, बड़ी तृष्णा है मनचाही के प्रति, और वो हुई नहीं तो व्याकुल हुए। तो इस तरह से जो व्याकुलता भीतर आती है, विकारों की वजह से आती है, इसको स्वीकार तो सब करेंगे, कोई ना नहीं करेगा, लेकिन इसका उद्गम कहाँ, गहराई से इसका उद्गम कहाँ, ये खोज निकाला कि इसका उद्गम ये है। ये तो सभी संत कहते आए, सभी धर्म गुरु ये बात कहते आए कि हमारी जो इंद्रियां हैं और ये इंद्रियों के विषय हैं, रूप है, शब्द है, गंध है, रस है, परशव्य पदार्थ है, मानस का चिंतन है, इनमें उलझो मत, ये दलदल है, इस दलदल में चले जाओगे तो निकल नहीं पाओगे, इसलिए न इनके प्रति राग करो, न इनके प्रति द्वेष करो। तो ये कोई बोधि प्राप्त व्यक्ति की निशानी नहीं है, ये तो हर आदमी कहेगा, कोई नई बात नहीं है। बुद्धि प्राप्त वाला क्या कहेगा, वो समझ जाएगा इस बात को कि ये बाहर का रूप, ये बाहर का शब्द, ये बाहर की आई हुई गंध, ये बाहर का आया हुआ रस, ये बाहर का आया हुआ स्पर्श पदार्थ, ये बाहर का कोई चिंतन, इसके प्रति राग नहीं जागता। ये तो ऊपर ऊपर से लगता है कि वो बाहर का रूप अच्छा लगा तो राग जागा, शब्द अच्छा लगा तो राग जागा इत्यादि, इसके प्रति द्वेष नहीं जागता। ये ऊपर ऊपर से लगता है कि ये शब्द अच्छा लगा तो राग जागा, बुरा लगा तो द्वेष जागा, नहीं जागता। ये बाहर का आलंबन शब्द है, रूप है, गंध है इत्यादि, और हमारे भीतर जागना, राग का जागना या द्वेष का जागना, इन दोनों के बीच की एक कड़ी, मिसिंग लिंक, उसको ढूंढ निकालता है। वो क्या ढूंढ निकालता है कि नहीं जागा रूप पर राग या क्रोध, रूप की वजह से जो संवेदना जागी, सुखद जागी या दुखद जागी, हमारा राग या द्वेष उस पर जागा, संवेदना पर जागा। सड़ाए तन पच्चया फस, छह इंद्रियों का स्पर्श होता है अपने अपने विषय से, फस पच्चया वेदना, जैसे ही स्पर्श होगा, कुदरत का बंधा बंधाया नियम है, जैसे ही स्पर्श होगा वैसे ही एक संवेदना होगी शरीर में, होगी ही, और फिर वेदना पच्चया तनहा, जब वेदना होगी शरीर में, सुखद होगी तो राग की तृष्णा, दुखद होगी तो द्वेष की तृष्णा, जागेगी ही। तो बात पकड़ में आ गई ना, तो उसको दूर करने का एक ही तरीका कि एक तो संवेदना हो रही है उसे जान, तो कैसे जाने, इतनी मोटी दीवार है, ऊपर ऊपर का चित्त ही जानने वाला है, भीतर वाला तो अंधा है, तो कैसे जाने कि हमारे संवेदना चल रही है। अब इतने लोग बैठे हैं, उनको कहो तुम्हारे भीतर एक प्रवाह चल रहा है चेतना का, तो कहे क्या चल रहा है, हम तो बिल्कुल ठोस हैं, क्या बात करते हो, हमारे अंदर क्या प्रवाह हो रहा है, क्या संवेदना हो रही है। जब करोगे विपश्यना तो पता लगेगा कि प्रति क्षण प्रति व्यक्ति के भीतर एक तरंगों का प्रवाह, एक तरंगों का प्रवाह, एक चेतना का प्रवाह चलते ही रहता है, प्रति क्षण सोते जागते जब तक जीवन है चलते ही रहता है। कभी सुखद होता है, कभी दुखद होता है, कभी न्यूट्रल होता है, सुखद होता है राग पैदा करते हैं, दुखद होता है द्वेष पैदा करते हैं, प्रति क्षण चल रहा है ये स्वभाव। इस स्वभाव शिकंजे में गिरफ्त हो गए हम, इस बिहेवियर पैटर्न में हम प्रिजनर हो गए, कैदी हो गए, कैसे इसके बाहर निकले। तो जहां कैद है, जहां पिंजरा है जिसने कैद कर रखा है, जहां ताले लगे हैं, वहां तक हमारी पहुंचे नहीं। तो बोधि प्राप्त व्यक्ति सबसे पहले ये रास्ता ढूंढता है कि वहां तक कैसे पहुंचे, तो नाक में सांस का सहारा लिया, और सांस के सहारे 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 मन को इतना तीक्ष्ण किया कि शरीर के अणु अणु में होने वाली संवेदना महसूस होने लगी। अब वो होने लगी तो सारा रहस्य समझ में आने लगा। देख कैसे कोई शब्द आया कि रूप आया कि गंध आया, किसी दरवाजे पे कुछ आया, जानने वाले ने जाना, पहचानने वाले ने पहचाना, और झट संवेदना चली सुखद या दुखद, और प्रतिक्रिया होने लगी, सारा रहस्य समझ में आने लगा। तो सारा रहस्य समझ में आने लगा तो उसके बाहर निकलना आसान हो गया। हमने अपने भीतर अपने जेल को देख लिया, अपने पिंजरे को देख लिया, अपने ताले को देख लिया, अब उसको खोलना आसान हो गया। जब तक हम यही नहीं जानते कि कहाँ बंधे हुए हैं तो कैसे मुक्त होंगे, होंगे ही नहीं। ये सारी बातें अनुभव से जानी जाएंगी, केवल पुस्तकों से नहीं, किसी बुद्धवाणी से कदापि नहीं समझ पाओगे, उलझ जाओगे, किसी महावीर वाणी से कदापि नहीं समझ पाओगे, उलझ जाओगे, किसी गीता से, कुरान से, बाइबल से कभी नहीं समझ पाओगे। अनुभव होना शुरू हुआ तो वो कि वो वाणियां धर्म की किसी भी संप्रदाय की हो, अगर उसमें सत्य है तो वो सारा सत्य सामने आना शुरू हो जाएगा, एकदम स्पष्ट समझ में आने लगेगा। अपनी बात कहूं, बहुत कट्टर सनातनी हिंदू घर में जन्मा और पला, और जैसे सब करते हैं वैसे बचपन से खूब पाठ करता रहा गीता का, और जरा बड़ा हुआ तो गीता पर प्रवचन देने लगा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कैसा स्थित प्रज्ञ होता है, उसका कैसा व्यवहार होता है, खूब समझाएं लोगों को, और घर आकर कभी कभी आंसू बहाएं कि क्या बोलाया मैं, हमारे में तो स्थित प्रज्ञता का नामो निशान नहीं, न हमारे में वीतरागता है, न वीद्वेषता है, कितना क्रोध है, कितनी वासना है, कितनी ईर्ष्या है, कितना अहंकार है, और बातें इतनी लंबी चौड़ी करते हैं, पर कैसे निकालें उसको आता ही नहीं, पता ही नहीं, पाठ पाठ किए जा रहे हैं केवल, क्योंकि किसी ने कह दिया एक पाठ कर लो एक जन्म का पाप कट जाएगा, बड़ा सस्ता सौदा, एक अध्याय का एक पाठ कर लो एक जन्म का सौदा खत्म, पाप धुल गया। अरे कैसे धुल गया भाई, भीतर तक गए ही नहीं जहाँ पाप पैदा करते हैं, प्रतिक्षण पैदा किए जा रहे हैं, धुल कैसे गया? तो एक श्लोक गीता का खूब पाठ करते थे, बार बार वो आता था, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। करते होंगे और लोग भी जो गीता का पाठ करते हैं। क्या कहा? उत्क्रमन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूढ़ लोग विपश्यना नहीं कर पाएंगे, विपश्यना करेगा उसी के ज्ञान चक्षु खुलेंगे, ज्ञान चक्षु खुलेंगे तो विपश्यना कर पाएगा, विपश्यना कर पाएगा तो ज्ञान चक्षु खुलेंगे, दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। जब तक की नहीं तब तक समझा नहीं, करने के बाद वही बात समझ में आने लगी। उत्क्रामंतं माने उठ खड़ा हुआ, मानस का एक खंड उठ खड़ा होता है जब इन छहों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय पर उसका विषय आके टकराता है, स्पर्श करता है, तो मानस का एक खंड कहता है कुछ खटपट हुआ, तो उत्क्रामंतं, इतने में दूसरा हिस्सा स्थितं, वो रुक करके सोचता है क्या हुआ, ये कैसी आवाज आई, ये कैसा रूप है, ये कैसी गंध है, तो अपनी पुरानी याददाश्त के बल पर, पुरानी अनुभव के बल पर उसे पहचानता है, पहचान के मूल्यांकन करता है, और मूल्यांकन करते ही संवेदना शुरू होती है, सुखद है या दुखद है, तो सुखद है तो सुख भोगने लगता है, दुखद है उसका दुख भोगने लगता है, तो कहा भुंजानं भुंजा लगा भोगने। अब क्योंकि संवेदना चल पड़ी तो लगा भोगने, लगा भोगने, और गुणान्वितं लगा बंधने। अरे विपश्यना किए बिना कैसे समझेगा रे, कैसे कैसे अनुवाद करता चला जाएगा, समझ ही नहीं आएगी। खूब पाठ करते थे, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः, ये प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो गया, क्योंकि इंद्रियां केवल इंद्रियों के अर्थ के लिए है। क्या बात हुई, इंद्रियां इंद्रियों के लिए और किस लिए होगा, आंख देखने के लिए ही होगी, कान सुनने के लिए होगा, उसमें क्या बात हुई, नहीं वो कैसे स्थित प्रज्ञ हो गया। अरे इसमें से गुजरे तो पता लगा, दिट्ठे दिट्ठमत्तं भविष्यति, देखने में केवल देखना हो, सुनने में केवल सुनना हो, सूंघने में केवल सूंघना हो, चखने में केवल चखना हो, स्पर्श में केवल स्पर्श हो, चिंतन में केवल चिंतन हो, आगे की बात खत्म। माने पहला हिस्सा जिसको विज्ञान कहा, पहला हिस्सा जो जानने का काम करता है, बस वहीं खत्म, गाड़ी रोक दी, उसके आगे पहचानने का काम, प्रतिक्रिया करने का काम, सारा खत्म। तो वो व्यक्ति प्रज्ञा में स्थित होने लगा, वो व्यक्ति मुक्ति की ओर जाने लगा। ये बात विपश्यना किए बिना, अनुभव हुए बिना कैसे समझ में आएगी, आ ही नहीं सकती। पातंजल की बहुत बात करते हैं पातंजल की, 95% पातंजल में विपश्यना ही विपश्यना भरी पड़ी। इतने सूत्रों में से केवल 2 या 3 सूत्र हैं जो कि आसन या प्राणायाम की बात करते हैं, बाकी सारे के सारे 2, 4, 5 और छोड़ करके, बाकी सारे के सारे विपश्यना की बात करते हैं। कोई नहीं करता, कोई समझता भी नहीं और समझ रहा है कि मैं अष्टांगिक योग कर रहा हूँ विपश्यना उसका पातंजल का, अरे बेचारे ने शरीर की कसरत कर ली, आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिए, और समझ गया कि अष्टांगिक योग कर रहा हूँ। कितनी गहराई से समझाई हुई है बात, लेकिन समझाई हुई है, करना कराना भूल गए थे, बातें हैं कोरी। तो आगे बढ़ते 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 पातंजल कहता है, उस समय नहीं समझ में आती थी, पाठ ही करते थे केवल, दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य, ये सूत्र है। माने विपश्यना में आगे बढ़ते 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 एक अवस्था आती है, दृष्टा दृषि मात्र, जो दृष्टा था, मैं देख रहा हूं, ये जो मैं था पिघल गया, मैं खत्म हो गया, दृष्टा दृषि मात्र, केवल दृश्य रह गया, कोई दृष्टा नहीं, केवल दृश्य है, मात्र दृश्य है, मात्र दर्शन है, दृष्टा दृषि मात्र, ऐसी अवस्था आई तो शुद्ध हो गया, चित्त शुद्ध हो गया, शुद्धोपि शुद्ध हो गया तो भी प्रत्ययानुपश्य, अब अनुपश्यना कर, काहे की अनुपश्यना कर, कि जो ये देखा जा रहा है इसके पीछे भी कोई कहानी है, इसके पीछे भी कोई प्रत्यय है, कोई कारण है, उस कारण को देख अब यूं देखते देखते मुक्त अवस्था तक पहुंचेगा। तो सारी विपश्यना विपश्यना कैसे समझेगा, बिना विपश्यना में से स्वयं गुजरे, बिना पातंजल को कोई कैसे समझेगा। धोखा ही धोखा, केवल अपने यहां नहीं है, सारा धोखा सब जगह। इतने पादरी आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, अब तक कोई 800-900 आ गए पादरी और साध्वियां, शिविरों में बैठते हैं। तो शुरू शुरू में जो उनके लीडर आए, उन्होंने कहा यू आर टीचिंग क्रिश्चियनिटी इन द नेम ऑफ बुद्ध, नाम बुद्ध का लेते हो आप, तो क्रिश्चियनिटी सिखाते हो। और फिर कहते हैं कि बाइबल तो अब समझ में आए, अब बाइबल पढ़ते हैं तो उसका अर्थ ही दूसरा नजर आता है। मुसलमानों के यहाँ शिविर लगा, मस्जिद में दो शिविर लगे, तो उनमें बड़े उनके विद्वान बैठे, तो एक विद्वान शिविर खत्म होने पर कहता है कि कुरान की दो आयतें ऐसी हैं जो किसी के समझ में नहीं आती, आज तक नहीं समझ में आई, और हमारे भी नहीं समझ में आई। लोग बड़ी टीका करते हैं उस पर, लेकिन उसको छोड़ देते हैं दो आयतों को। अब ये विपश्यना में बैठे तो बात समझ में आई। हमारे यहाँ भी इस बात की चर्चा तो है, ध्यान करना चाहिए, पर कैसे करना चाहिए, कोई ध्यान है ही नहीं, बस केवल कर्मकांड है, प्रेयर्स कर ली, बात खत्म कर ली, नमाज कर ली, ध्यान कैसे करें ये भूल गए। तो वो दो लाइनें क्या थी वो हमें सुनाता है, अरबी भाषा की है वो। तो उसमें कहता है कि जो आदमी अपने सांस को देख लेता है और अच्छी तरह देख लेता है वो अल्लाह को देख लेता है, जो आदमी अपने शरीर को देख लेता है और अच्छी तरह देख लेता है वो अल्लाह को देख लेता है। कहते रोज पढ़ते हैं, अरे सांस को पहली बात तो देखे ही क्या, ना उसका कोई रंग है ना उसका रूप है, क्या देखें सांस को। और शरीर तो जब नहाते हैं तो देख ही लेते हैं, एक बार तो सारा शरीर देख लेते हैं, हमको तो अल्लाह ने दिखाई दिया, ये कैसी बात है। और हम नुक्ताचीनी कर नहीं सकते, पैगंबर मोहम्मद साहब की वाणी है, वो गलत हो नहीं सकती। अब समझ में आया कैसे सांस को देखें और कैसे शरीर को देखें, और उसको देखने से ये परम सत्य नामक अल्लाह कैसे दिख जाएगा, ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से हर संप्रदाय का व्यक्ति, शिविर लगे एक संप्रदाय में, जैनियों के एक संप्रदाय में, उनके जितने साधु साध्वी थे कुछ 400 होंगे, सारे के सारे बैठे, चार शिविर लगे। तो एक भाई उनका जो बहुत विद्वान था, उन्होंने आगम की एक पुस्तक आचारंग उसका अनुवाद किया, और शिविरों में 3-4 शिविर बैठने के बाद कहता है तो बड़ी भूल हो गई, हमने जो अनुवाद किया वो सारा गलत हो गया, समझे ही नहीं थे, अब इसमें से गुजरे तो समझ में आए। तो हमसे पूछता है एक बात अभी भी नहीं समझ में आई, आप बताइए। उसमें था माने विपश्यना किस तरह से सर्वव्यापी, सब जानते हैं विपश्यना अच्छी है, कैसे करें, करना भूल गए वो अलग बात है। विपश्यना के प्रति किसी को संदेह नहीं जो जो शास्त्रकार हैं, लेकिन कैसे करें ये विद्या खत्म हो गई थी। तो आयत चक्षु लोक विपश्यी, चक्षु खुल जाए, ज्ञान के प्रज्ञा के चक्षु खुल जाए, किसके, जो अपने भीतर विपश्यना करना सीख गया, जो विपश्यी हो गया। और फिर आगे जाते कहते कहते क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति यही मत चिए ही, अरे भीतर सब कुछ मृत्य है मृत्य है मृत्य है, ऐसा देखते देखते वो व्यक्ति ए सवीरे पसंसिये जे बद्धे पड़िमोइये, अपने सारा बंधन खोल लेता है, और बड़ा वीर व्यक्ति है वो और बड़ी प्रशंसा के लायक व्यक्ति है। तो ये मुनि महाराज हमसे आकर कहते हैं कि ये संदिग्ध विदित्वा, उसमें लिखा संदिग्ध विदित्वा, ये क्या हुआ, ये नहीं समझ में आया। तो अनुवाद करते थे बेचारे, कुछ जानते नहीं, तो कि हड्डियों की संधि कहाँ कहाँ है, जहां जहां हड्डी की संधि है उसका ध्यान करो, उसका ध्यान करने से क्या मिलेगा। तो विपश्यना करे तो बात समझ में आए, चित्त धारा पर राग की संधि कहाँ हुई, चित्त धारा पर द्वेष की संधि कहाँ हुई, उस संधि को जाने, अनुभूति से जाने, चित्त धारा में तरंगे चलने लगी, सुखद चलने लगी और राग जागा, दुखद चलने लगी और द्वेष जागा, उसको जाने तो बाहर निकलेगा, तो अपने बंधन खोल सकेगा, नहीं तो बंधन नहीं खोल सकेगा। तो सारी बातें सब जगह एक जैसी पर करे नहीं, केवल पाठ करे तो क्या पल्ले पड़ेगा, कुछ मिले मिलाएगा नहीं। तो इसीलिए कहते हैं केवल धर्म ग्रंथों को पढ़कर कोई समझे कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, होने वाली बात नहीं। धर्म को ये जितनी दार्शनिक मान्यताएं हैं उनसे दूर रखे, होंगे भाई सही भी होंगी नहीं भी होंगी। हम देखते हैं शिविरों में लोग आते हैं, पहले तो आते हुए ये घबराते हैं कि ये तो बुद्धिज्म है, ये तो बौद्ध धर्म है, और हम तो कट्टर हिंदू हैं, हम तो कट्टर जैन हैं, हम तो कट्टर मुसलमान हैं, हम तो कट्टर वो हैं, कट्टर वो हैं, कट्टर वो हैं। अरे बाबा, तुम्हें धार्मिक बनाया जा रहा है, तुम हिंदू हो तो अच्छे हिंदू हो जाओगे, मुसलमान हो तो अच्छे मुसलमान हो जाओगे, जैन हो तो अच्छे जैन हो जाओगे, अच्छे आदमी बन जाओगे। अच्छे आदमी बनने के लिए धर्म होता है, फिर भी हिचकता है, वो हमारी मान्यता तो इसमें आई नहीं, उसका क्या हुआ, वो हमारी मान्यता का क्या हुआ, वो तो आई नहीं। ऐसे आदमी को आगे बढ़ने में बाधाएं आती है, बढ़ता तो काम करते करते बाधाएं आती है। जिसके होश ठिकाने होता है तो उसे एक बात समझाते हैं, अच्छा बाबा तेरे भीतर कोई आत्मा है तो रहे, नहीं है तो नहीं है, है तो है, अगर है भी तो उस बेचारी का कल्याण ही होगा ना। तू कर क्या रहा है, तू अपने राग निकाल रहा है, द्वेष निकाल रहा है, वीतराग हो रहा है, विद्वेष हो रहा है, इसमें बुरी बात क्या कर रहा है। तो अच्छा जीवन जीने के लिए भीतर तक प्रयत्न कर रहा है, अपने आप को निर्मल कर रहा है, इसमें बुरी बात क्या कर रहा है। कोई आत्मा होगी उसका कल्याण ही होगा ना, और अगर कोई परमात्मा होगा सारे संसार को बनाने वाला, वो खुश ही होगा ना। आखिर अगर उसने नियम बनाए हैं, उसके नियमों के अनुसार हम चल रहे हैं तो बड़ा खुश होगा, उसके नियमों को तोड़ेंगे तो नाराज होगा। तो तकलीफ क्या हुई तुम्हें, तुम एक बार इस झगड़े को एक तरफ रखो, अपने इस काम में लगो, सारे कर्म कांडों को एक तरफ रखो, इस काम में लगो, करके तो देखो, आजमा के तो देखो। पहले 10 दिन केवल आजमाने के होते हैं, ये देखने के लिए कि आदमी जो बोल रहा है सचमुच ठीक बोल रहा है कि नहीं, सचमुच ऐसा ही है कि नहीं, ऐसा देखने के लिए होता है। और फिर जब करने लगता है तो बात समझ में आती है कि अरे भाई, धर्म शुद्ध होता है तो प्योर साइंस है और कुछ नहीं है, लॉ ऑफ नेचर है, कुछ नहीं। और लॉ ऑफ नेचर और साइंस किसी एक समाज का, एक संप्रदाय का नहीं हुआ करता, कुछ नहीं। ऐसा ऐसा होगा तो ये परिणाम आएगा ही, साइंस हमें यही सिखाता है, ऐसा ऐसा होगा। ये इमस्मिन सति इदं होति, इमस्मिन असति इदं न होति। ये होगा तो ये परिणाम आएगा ही, ये नहीं होगा तो ये परिणाम नहीं आएगा। बहुत सीधी सीधी बात, धर्म की हमने कितना उलझा दिया उसको, इन दार्शनिक मान्यताओं में, कर्मकांडों में और इस पुरोहितगिरी में, न जाने कितना उलझा दिया इसको। सीधी सी बात है, दो हिस्सा हाइड्रोजन का हो, एक हिस्सा ऑक्सीजन का हो, मिले तो मिलते ही मॉइस्चर बन गया। अब उसको हिंदू कहोगे कि बौद्ध कहोगे कि जैन कहोगे, क्या कहोगे, प्रकृति का नियम है। दो हिस्सा हाइड्रोजन है, एक हिस्सा ऑक्सीजन है, मिला कि इसका ये परिणाम आया। और जिस किसी ग्रह में, उपग्रह में हाइड्रोजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, वह मॉइस्चर भी नहीं। सीधी सीधी बात है, अगर हमारे शरीर पर संवेदना हो रही है और हम राग की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, द्वेष की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो दुख आ ही रहा है, दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती हमें। और संवेदना है ही नहीं, हम ऐसी अवस्था में पहुंच गए, इंद्रियातीत अवस्था में, जहां कोई संवेदना नहीं है, अथवा संवेदना है तो हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, दोनों का मेल नहीं है, खाली हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं मिला, खाली ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं मिला, दोनों नहीं मिले, नहीं मिले दुख नहीं आया। अरे इतनी सीधी सी बात, इसमें क्या हिंदुइज्म, क्या बुद्धिज्म, क्या जैनिज्म, कहाँ उलझ गए, किधर उलझ गए, कुछ होश खो बैठे अपना। ये धर्म को संप्रदाय क्या बनाया कि धर्म ही डूब गया, भूल गए धर्म क्या होता है। हिंदू धर्म तो हिंदू प्रमुख हो गया, जैन धर्म जैन प्रमुख हो गया, बौद्ध धर्म बौद्ध प्रमुख हो गया, धर्म डूब गया, अंधेरे में चला गया, नैपथ्य में चला गया, उसके कोई महत्व ही नहीं रह गया। महत्व ये जो 7 पुछल्ले लगे हैं, इन पुछलों का महत्व हो गया। अरे अन्यथा बिल्कुल साधारण बात है, कोई गलीलियो नाम का व्यक्ति, या अपने या आर्यभट्ट नाम का व्यक्ति, उसने अपनी बुद्धि लगा करके ये सिद्ध किया कि ये जो चपटी चपटी लगने वाली पृथ्वी है ना, ये चपटी नहीं है, ये गोल है, और गोल ही नहीं है, ये अपनी धुरी पर घूमती है, इसीलिए दिन रात होते हैं, तो पहले भी होती थी। गलीलियो नहीं होता तो भी पृथ्वी गोल ही थी, अपनी धुरी पर घूमती थी, गलीलियो था तो भी ऐसे ही थी, गलीलियो के बाद भी वैसे ही होगा। कुछ लोगों ने नहीं माना, फिर धीरे धीरे मानने लगे, बात तो सही थी, सही बात के मानने लगे। तो कोई गलीलियो धर्म में चले गए क्या, वो लोग गलीलियो धर्मी हो गए, क्या हो गया। अरे साइंस है, एक बात सही है, किसी ने ढूंढ के बताई, हमारे काम की थी, हमने स्वीकार कर ली। किसी न्यूटन ने ये बात खोज निकाली कि भाई ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो तो पहले भी था, न्यूटन नहीं होता तो भी था, न्यूटन था तब भी था, न्यूटन के बाद भी रहेगा अनंत काल तक, हम नहीं जानते थे, उसने ढूंढ के बताया, हमारे काम की बात थी, हमने स्वीकार कर लिया। तो कौन से संप्रदाय में दीक्षित हो गए हम, न्यूटन के संप्रदाय में दीक्षित हो गए, और उसकी सही बात थी, वैज्ञानिक बात थी, हमने स्वीकार कर ली। किसी आइंस्टीन ने लॉ ऑफ रिलेटिविटी ढूंढ निकाला तो क्या हुआ, हमने स्वीकार कर लिया, जितना जितना हमारे काम आया हमने उसका काम लिया। इसी तरह से कोई बोधि प्राप्त व्यक्ति एक वैज्ञानिक की तरह एक सच्चाई की खोज करता है कि तुम क्यों दुखी हो जाते हो, अपने अंतर मन की गहराई में जाके देखो, शरीर पर संवेदनाएं जाग रही हैं, बाहर के आलंबनों के वजह से शरीर पर संवेदनाएं जाग रही हैं, सुखद हुई दुखद हुई, सुखद हुई तुमने राग जगाया, दुखद हुई तुमने द्वेष जगाया। इस सच्चाई को एक आदमी खोज लेता है तो इसमें बौद्ध संप्रदाय की क्या बात आई भाई, जरा सोच के देखें, इसमें जैन संप्रदाय क्या बात आई, इसमें हिंदू संप्रदाय क्या बात आई। धर्म है, और धर्म इतना शुद्ध होता है, इतना शुद्ध होता है कि उसके साथ कोई चिपकाव होते ही डूब जाएगा। दूध में एक बूंद कांजी की दाल दुखट जाएगा। उसको शुद्ध रखो, किसी संप्रदाय से जुड़ने मत दो, फिर देखो कितना कल्याणकारी होता है, कितना कल्याणकारी होता है, खूब कल्याणकारी होगा। भीतर जब देखना शुरू कर दोगे और एक वैज्ञानिक की तरह देखोगे, मैं बौद्ध धर्म अनुभव कर रहा हूं, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, मैं धर्म का अनुभव कर रहा हूं, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त एक वैज्ञानिक की तरह अपने भीतर सच्चाई को देखोगे, बहुत सा रहस्य खुलना शुरू हो जाएगा। मैं क्यों व्याकुल लंबे अरसे तक रहता हूं, किसी ने गाली दी, मुझे होश नहीं है, मैंने क्रोध जगा लिया, यही अपने आप में व्याकुलता का बड़ा कारण हुआ। अंदर जाकर के, ये ऊंची अवस्थाओं की बात है लेकिन आने लगेगी ऊंची अवस्था, कोई ऐसी ऊंची अवस्था नहीं है कि जहां तिल टूटने पर मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी ऊंची अवस्थाएं हैं जिनमें सच्चाई सामने आनी शुरू हो जाएंगी। क्या आएगा कि जैसे ही मैंने क्रोध जगाया, भीतर किस प्रकार के करंट चल रहे हैं, माइंड और मैटर का इंटरेक्शन कैसे चल रहा है, एक वैज्ञानिक की तरह हमें देखना है। बाहर के वेस्ट के वैज्ञानिक हैं वो, शरीर का विज्ञान वाला फिजियोलॉजिस्ट अपनी जगह अलग, और दिमाग का मन का वैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट अपनी जगह अलग, लेकिन यहाँ का व्यक्ति इतना बड़ा वैज्ञानिक था, इन दोनों के इंटरकनेक्शन को देख रहा है, और इनको देखते देखते कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कैसे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, कैसे भीतर ही भीतर करंट पर करंट चल रहे हैं, काउंटर करंट चल रहे हैं, क्रॉस करंट चल रहे हैं, उनका क्या प्रभाव हो रहा है, वो सारा देख रहा है। कैसे माइंड मैटर में बदल जाता है, कैसे मैटर माइंड में बदल जाता है, सारा देख रहा है। और हर आदमी देख सकता है, उसने तो रास्ता ढूंढ निकाला केवल जो खोया हुआ था। ये जो कुदरत का कानून हमारे भीतर काम कर रहा है, ये कोई बुद्ध हो या ना हो, उसके पहले भी ऐसे ही काम करता है, बुद्ध के समय भी ऐसे ही काम करता है, बुद्ध के बाद भी ऐसे ही काम करेगा। बुद्ध जैसे व्यक्ति की ये विशेषता होती है कि वो एक वैज्ञानिक की तरह सारी मान्यताओं को एक ओर रख करके, सारे कर्मकांडों को एक ओर रख करके अपने भीतर क्या हो रहा है, यथाभूत ज्ञान दर्शन, यथाभूत ज्ञान दर्शन, क्षण प्रतिक्षण आपो आप निरंजन सोई, आपो आप निरंजन सोई, यूं देखता हुआ अंदर सारा रहस्य उद्घाटन कर लेता है, सब समझ जाता है। ऐसा हर आदमी देख सकता है। क्रोध जागा मन में, और उसका असर होना शुरू हुआ शरीर पर, उसी वक्त एक बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू हुआ, तो हमारे नसों में से, हमारे ग्लैंड्स में से, ग्रंथियों में से एक तरह का स्राव निकलना शुरू हुआ, एक तरह का कोई बहाव निकलना शुरू हुआ, कोई द्रव्य निकलना शुरू हुआ, बायोकेमिकल निकलना शुरू हुआ, और उसका बहाव जो हुआ उसे उन दिनों की भाषा में आश्रव कहा। यह बहाव चला। अब क्योंकि क्रोध की वजह से यह आश्रव पैदा हुआ है तो बड़ा बेचैनी पैदा करने वाला है। ये जो केमिकल बायोकेमिकल तैयार हुआ और बहने लगा, बहुत बेचैनी पैदा करता है, बेचैनी पैदा करता और गुस्सा आता है। ऊपर ऊपर की बात तो यह कि उसने गाली दी इसलिए गुस्सा आ रहा है, तो पहली बात तो ठीक, उसने गाली दी और हमने गुस्सा किया, अब क्या होने लगा। पहली क्षण गुस्सा करते ही यह बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू हुआ, यह आश्रव, क्रोध का आश्रव बहाव बहने लगा, और जैसे बहा वैसे क्रोध हो रहा है। अब क्रोध आ रहा है उस आश्रव पर, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, बेचैनी होती है। फिर जैसे ही क्रोध आया वो आश्रव बढ़ा, वो आश्रव बढ़ा, अरे किस दुष्चक्र में पड़ गए हम, अपना क्रोध बढ़ाए जा रहे हैं, हम निकलना चाहते हैं उससे, हम दुख से निकलना चाहते हैं, पागलपन ये बना लिया कि उसको बढ़ाए जा रहे हैं। यही बात सब पर लागू होती है। वासना जागी कि जागते एक तरह का फ्लो बहना शुरू हो जाएगा, वो अपनी वासना और बढ़ाएगा, वासना और बढ़ेगी वो फ्लो और बढ़ेगा, फ्लो और बढ़ेगा वासना और बढ़ेगी। जानते नहीं हम क्या हो रहा है भीतर, कैसे रोकें उसको, इस विशेष सर्कल में से कैसे निकलें, कहाँ उलझ गए। ये विपश्यना सिखाएगी कैसे निकलें, क्योंकि जैसे ही कोई फ्लो शुरू होगा बहना, एक सेंसेशन शुरू होगी, हम उस सेंसेशन को देख रहे हैं, हम नहीं रिएक्ट करते, उसकी ताकत कम हुई जा रही है, वो समाप्त हो गई। हम रिएक्ट करते हैं, उसकी ताकत बढ़े जा रही है, हम दुखी हुए जा रहे हैं। अरे इतनी सिंपल सी बात, इतनी सीधी सी बात, और कहाँ उलझा दिया। ये हमारी दार्शनिक मान्यता ऐसी, उनकी दार्शनिक मान्यता ऐसी, हमारा कर्मकांड ऐसा, उसका, अरे करना तो चाहे जैसा कर्मकांड, तो मानना चाहे जैसी मान्यता, वो भीतर का काम तो वैसे ही चलेगा। वैसे राग जगाओगे, द्वेष जगाओगे, क्रोध जगाओगे, ईर्ष्या जगाओगे, वासना जगाओगे, अहंकार जगाओगे, दुखियारे रहोगे, तो उसके बाहर निकलना है ना। ये तो सब मानेंगे कि हमको विकारों से बाहर निकलना है, ये छह रिपु हमारे छह दुश्मन हैं, इनके बाहर निकलना है। लेकिन लेगा काम कुछ करे नहीं तो कैसे होगा। तो अपने आप को ये दृढ़ करके कि भाई मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगा, जैन हूँ, जैन ही रहूँगा, बौद्ध हूँ, बौद्ध ही रहूँगा, लेकिन ये विद्या अपना करके तो देखूँ, अजमा करके तो देखूँ, जीवन के 10 दिन इसको दे करके देखूँ, बड़ा कल्याण होगा, सचमुच बड़ा कल्याण होगा। अपने अनुभव की बात कहता हूँ कि इतना कट्टर कि अरे कहीं बौद्ध हो गया तो आत्मा को नहीं मानूंगा, ये तो बड़े नास्तिक हैं, परमात्मा को नहीं मानूंगा, बड़े नास्तिक है, मैं भी ऐसा नास्तिक हो जाऊंगा तो घोर नरक में जाऊंगा, ना बाबा ना, मर जाऊं भले, लेकिन मैं नहीं जाने वाला। कोई भाग्य जागा कि भाई एक बार अजमा के तो देखें, तो ये दृढ़ निश्चय करके कि कट्टर हिंदू ही रहूंगा, लेकिन एक बार अजमा करके तो देखें। चौथा दिन होते होते ऐसे ज्ञान के चक्षु खुले, प्रज्ञा के चक्षु खुले, अरे सारे जीवन भर इसी की तो खोज थी कि मेरे भीतर जो विकारों का पुंज है वो कैसे निकले। तो उपदेश तो बहुत पढ़े, गीता में भी पढ़े, वेदांत में भी पढ़े, सब जगह पढ़े, सब जगह, हर किसी धर्मशास्त्र को उठा लो, सब वही कहेगा, राग से दूर हो, द्वेष से दूर हो, वीतराग भय क्रोध हो, वीतराग भय क्रोध हो, इत्यादि सब कहते चले जाएंगे। कैसे हो, कोई रास्ता नहीं ना, केवल चिंतन करने से हो जाएगा, तो सारे लोग वीतराग हो जाते, केवल व्रत करने से हो जाएगा, उपवास करने से हो जाएगा तो सब लोग हो जाते, केवल कर्मकांड करने से हो जाएगा। अरे उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है भाई, ऐसा ऐसा है तो राग जागेगा ही, अगर राग नहीं जगाना है तो ऐसा ऐसा न होने दें, सीधी सीधी बात। और जब ये रास्ता मिला तो समझा कि मैं कितना निहाल हो गया, अरे कल्याण हो गया। अब अपने आप को चाहे जिस नाम से पुकारूं रे, इन नामों में क्या पड़ा है, अपने को हिंदू कहता रहूं, बौद्ध कहता रहूं, जैन कहता रहूं, ईसाई कहता रहूं, नाम बदल के क्या मिल जाने वाला है। आदमी बन जाए ना, अच्छे आदमी बन जाए, बड़ा कल्याण है, शुद्ध धर्म समझ में आ जाए। पहले तो बुद्धि से समझना होता है और फिर चिंतन करके ये बात कि भाई बात तो मानने जैसी लगती है, बुद्धि संगत लगती है, तर्क संगत लगती है, न्याय संगत लगती है, वैज्ञानिक लगती है, तब करके देखे, बिना किए ही अपना फैसला दे दे कि ऐसा तो हमारे यहाँ भी है, ऐसा तो हमारे यहाँ भी है, अरे तेरे यहाँ है तो पर करता कराता नहीं ना, तो करके तो देखना, करेगा तो तेरे यहाँ जो है वो समझ में आने लगेगा। गीता वाले को गीता समझ में आने लगेगी बहुत अच्छी तरह, बाइबल वाले को बाइबल समझ में आने लगेगी, कुरान वाले को कुरान समझ में आने लगेगी, अरे करके तो देख। तो भाई ये 5 दिनों की जो धर्म गंगा बही, उसे बुद्धि विलास में नहीं समाप्त कर दें, उसे वाणी विलास में नहीं समाप्त कर दें। अपने यहाँ एक बहुत बड़ा रोग है, भारत का बहुत बड़ा रोग, और भारत के आसपास जितने ये देश हैं सब का एक रोग है, पुरखों का रोग चला आ रहा है। एक संत ने बड़े काम की बात कही, संत है तो काम की बात ही कहेगा, क्या स्वभाव हो गया हम लोगों का, आज इसकी बात सुनी बड़े खुश हुए, बहुत अच्छा आज तो बड़ा मन पसंद हुआ, अरे बड़ी अच्छी धर्म की बात सुनी, आज गुरु महाराज की सुनी तो कल किसी मौलवी जी की सुनी तो परसों किसी पादरी जी की सुनी तो परसों किसी मुनि जी की सुनी तो किसी पंडित जी की सुनी, बस सुनी ही सुनी, सुनते चले गए, यहाँ घंटे भर मन आमोद प्रमोद में चला गया, वहाँ घंटे भर मनोरंजन हो गया, अरे पल्ले क्या पड़ा। तो संत कहता है कि कथे बदे सुने सब कोई, कथे कहता है, कहने वाले को कहने का चस्का लग गया, कहकर बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है, आज मैंने केवेरो कितना तीर मार लिया, देखो कितना अच्छा कहा, सब लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे, बड़ा खुश हुआ। कथे बदे बोलता है, बस खूब बोलता है, बोलते ही जाता है, और सुनने वाले सुने, कथे बदे सुने सब कोई, और फिर कहता है कथे न होई, अरे सुने न होई, कहने से कुछ नहीं होता और सुनने से कुछ नहीं होता तो किससे होता है, किए होई ओ किए होई, कथे न होई सुने न होई किए होई। तो भाई करना है, धर्म का रास्ते पर चलना है, उसका कैसे चलें ये तरीका सीखना है, किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, अपने आप पर एहसान करने के लिए, अपने भले के लिए, अपने मंगल के लिए। 5 दिनों की इस धर्म गंगा के कलकल निनाद सुना सुना, अब करने का काम, करने का काम। इन 5 दिनों में जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, सावधानी से असावधानी से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो किसी भाई को चोट पहुंचा गया हो, किसी का जी दुखा गया हो, तो करबद्ध उनसे प्रार्थना है क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। लाओ, बुद्ध शासन में त्रिरत्न शरण को बहुत बड़ा महत्व दिखाया गया है। कृपया बता दीजिए कि विपश्यना साधकों के लिए ये शरण आवश्यक है या नहीं? बहुत आवश्यक है, लेकिन समझदारी के साथ आवश्यक है। कोई आदमी ये समझे कि मैं कहूँ बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध के शरण चला गया और बाकी काम बुद्ध करेगा, तारने का आप ही तार देगा, उसकी शरण चला गया ना, अब मुझे फ्री लाइसेंस मिल गया चाहे सो करूँ, तो बुद्धं शरणं गच्छामि निकम्मी बात हुई, मत कर लेना ऐसे। ऐसे ही कोई समझे संगम शरणं गच्छामि, कह दिया अब संघ मुझको आप ही तार देगा, कोई तारने वाला नहीं। चाहे बुद्ध की शरण चाहे संघ की शरण, दोनों शरण में धर्म की शरण, और धर्म की शरण के माने ये कि अपने जीवन में धर्म उतारें, फिर खूब तर जाओगे, सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे। विपश्य यही करता है, बहुत आवश्यक है ये। तो प्लीज एक्सप्लेन ए लिटल बिट डिटेल्स ऑन 3 days ऑफ समाधि। नो, दोज डिटेल्स वोंट हेल्प यू, बिकॉज यू हैव टू कम एंड एक्सपीरियंस यूर सेल्फ। ए जनरल रफ आउटलाइन इज ऑलरेडी गिवन। आप बार बार कर्म कांड का चर्चा करते हैं, प्रकृति के अनुकूल चलने पर भी कर्म कांड होते हैं, हुए। कर्म कांड को कर्म कांड समझ करके काम करने में कोई दोष नहीं, कर्म कांड को तारने वाला समझ करके काम करेंगे तो कठिनाई में पड़ जाएंगे। सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए सारा राज्य और वैभव छोड़कर राजनीति से अलग हुए हैं। आज वही देश नेपाल में बुद्ध के वस्त्र यानि भिक्षु ने राजनीतिक संलग्न होकर हुए हैं, इसमें आपका क्या विचार है? भाई ये व्यक्ति व्यक्ति का निर्णय, हमारा क्या विचार कहें हम? वस्तुतः एक भिक्षु का जीवन अपने आप को शुद्ध करके औरों को चित्त शुद्धि में कैसे सहायक हो जाए, यही लक्ष्य होता है, दूसरा नहीं। लेकिन अन्य किसी कारण से भी लोक कल्याण होता हो, पहले अपना चित्त शुद्ध करे। वो न करे और राजनीति में उलझ जाए तो अपनी भी हानि। हम तो कहेंगे कि राजनीति में धर्म आना ही चाहिए। बहुत चर्चा होती है भारत में आजकल कि राजनीति को धर्म को अलग करो, राजनीति को, हम कहते हैं राजनीति को और संप्रदाय को अलग करो। राजनीति तो शुद्ध धर्म उसमें समा जाए, राजनीति कल्याणकारी हो जाएगी। राज्य में धर्म समा जाए, राज्य कल्याणकारी हो जाएगा। राज्य हो, राजनीति हो, समाज नीति हो, सर्वत्र धर्म समा जाए, बड़ा कल्याण हो जाएगा। अगर भिक्षु इसमें सहायक होता है कि हमारे सारे जीवन में सब जगह धर्म ही धर्म समा जाए, तो अपना सेवा कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है। और उलझाने की बात है तब तो बचना चाहिए उससे, काम की बात नहीं। पूर्व जन्म के ज्ञान प्राप्त करने का उपाय बताइए। आइए विपश्यना कीजिए और उन गहराइयों में चले जाएंगे कि मन इतना निर्मल, इतना प्रांजल हो जाएगा कि अपनी पिछली बातें देखना शुरू करेंगे। उसकी एक विधि होती है, देखते 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 इस जीवन की सारी बातें सामने आएगी। जन्म हो रहा है वो सामने आएगी, गर्भाधान हो रहा है वो सामने आएगा, और उसके एक क्षण पहले क्या अवस्था थी वो सामने आएगी। यूँ पीछे की ओर जाना शुरू कर देंगे, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, कोई जादू चमत्कार नहीं है। आपका क्या किया भाई? वायोजता एक बार सुनने से खुश होगा हम लोग। क्या सुनना चाहते हो हमारे? घंटे भर तो बोलते ही गए हम, और क्या सुनना है? आग का प्राकृतिक स्वभाव धर्म, जलना जलाना है। मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव बतलाने की कृपा करें। मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव अंदर जाने पर मालूम होगा कि चित्त अपने आप में बड़ा निर्मल है, और निर्मल चित्त का स्वभाव मैत्री है, करुणा है, सद्भावना है, ये उसका अपना स्वभाव है। बिगाड़ लिया हमने, अपने पागलपन से बिगाड़ लिया, तो अपने सही स्वभाव में स्थापित हो जाएं, बड़ा कल्याण होगा। जब कोई नया साधक 10 दिवसीय शिविर में आता है और 3 दिन तक तो आनापान में बैठता है, 4th दिन ही अक्सर साधक शिविर छोड़ के भागता है। जो भागता है वो खोता है, जो रहता है वो पाता है, हम क्या करें। ऑपरेशन है भाई मन का। और हम अन्य साधनाओं की निंदा नहीं करते, बात समझ लेनी चाहिए कि क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। जब हम किसी शब्द का बार बार उच्चारण करेंगे तो हर शब्द की अपनी एक तरंग होती है, और बार बार उच्चारण किए जा रहे हैं तो तरंग इतनी तेज होगी कि हमारा सारा शरीर, सारा मानस उसमें अनगल्फ हो जाएगा, समाहित हो जाएगा, हम पर बहुत मोटी मोटी तह लग जाएगी उस पर्टिकुलर तरंग की जो हमने तैयार की, हमने आर्टिफिशियली उसको बनाया, इस तरह की तरंग। तो अच्छा है, उससे लाभ ये होगा कि बाहर की दूषित तरंग हम पर आक्रमण नहीं कर पाएगी, लेकिन अपने भीतर की तरंग को नहीं जान पाएंगे। जब क्रोध आता है तब क्या होता है, वासना जागती है तब क्या होता है, ईर्ष्या होती है तब क्या, हमें वो जानना है, और जान करके अपने भीतर वाले मन का स्वभाव पलटना है, तो वो बाधा बन गई, वही हमारे लिए बाधा हो गई, इसलिए कोई शब्द नहीं इस्तेमाल करने देते। तो इसमें तो ऑपरेशन शुरू होता है, काम शुरू करते ही अंदर की ओर जाते 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 कहाँ तरंगे हैं वहाँ तक पहुँचना है, तो ऑपरेशन अच्छा नहीं लगता। जब जाते हो अस्पताल में, ऑपरेशन कराते हो तो एनेस्थीसिया मिल जाता है, यहाँ तो एनेस्थीसिया भी नहीं, और वहाँ तो कोई और ऑपरेशन करता है, यहाँ तो खुद ही ऑपरेशन करना पड़ता है, तो जी घबराता है, भाग यहाँ से, हमसे नहीं होगा, भाग यहाँ से। ज़्यादा नहीं, कोई 100-200 में से इक्का दुक्का भागता है, तो मत घबराओ, उनको अपना आदर्श मत बनाओ, जो रहते हैं उनको आदर्श बनाओ, कल्याण होगा। कायेन संबरो साधु, साधु वाचाय संबरो, मनसा संबरो साधु, साधु सब्बत्थ संबरो। बस ये जो सब्बत्थ संबरो, ये महत्व की बात है, हम समझते नहीं, बुद्ध की वाणी को भी बिना उसमें से गुजरे हुए। मनसा संबरो साधु, मन को संवरित करना, संयमित करना बहुत कल्याणकारी है, लेकिन केवल ऊपरी मन को हम संवरित करके रह गए तो पूरा कल्याण नहीं हुआ। सब्बत्थ सर्वत्र, सारा का सारा मानस और उसके साथ साथ सारे का सारा शरीर, तो फिर सारी की सारी इंद्रियां हमारे काबू में आ जाएंगी, क्योंकि जड़ों तक हमने अपने आप को सुधार लिया। कुड यू प्लीज इन्फॉर्म अस हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई डिड यू लर्न एंड स्टार्टेड योर विपश्यना? दैट इज अ हिस्ट्री नाउ एंड आई डोंट थिंक देयर इज टाइम फॉर दैट। Only thing that I can say is that it was a great fortune for me that I came in contact with Vipassana, and I got this wonderful path which turned the whole life, a new life and a wonderful life. Please try to copy that. It will be helpful to you. Yeh man aur chitt mein antar kya hai? Shabdon ka antar hai. Ek parampara kehti hai vigyan, sangya, vedana, sanskar. ये चेतना के 4 खंड, ये नाम देती है। दूसरी उसी को नाम देती है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। नामों में क्या पड़ा है, एक समझने वाला, एक जानने वाला, एक पहचानने वाला, एक संवेदनशील होने वाला, एक प्रतिक्रिया करने वाला। तो ये भी अनुभव द्वारा ही काम आएगा, खाली शब्दों को समझ लेने से बात नहीं बनेगी। विपश्यना केंद्र के सभी स्थानों पर धम्मगिरी, धम्म गंगा, धम्म इत्यादि नाम क्यों है? क्योंकि धम्म है, सब जगह धर्म सिखाते हैं, और क्या सिखाएंगे वहाँ पर? कर्मकांड नहीं सिखाते, कोई संप्रदाय में दीक्षित नहीं करते, किसी को नहीं कहते कल से तो अपने आप को बौद्ध कहना शुरू कर दे, क्या लेना देना हमें, भगवान बुद्ध ने ही नहीं किया। मोगलायन ब्राह्मण नाम है तो ब्राह्मण ही नाम रहने दिया, काश्यप ब्राह्मण नाम है तो ब्राह्मण नाम ही रहने दिया, सारिपुत्र ब्राह्मण नाम है, ब्राह्मण नाम ही रहने दिया, कि भारद्वाज की जितने भी हुए कोई का नाम नहीं बदला। अरे क्या मिल जाएगा नाम बदल करके, कोई अपने आप को चाहे जिस नाम से पुकारे ना, लेकिन धर्मवान बन जाएगा तो अच्छा आदमी बन जाएगा, बड़ा सुख का जीवन जिएगा, यही सिखाते हैं, इसलिए धम्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वी ट्राई टू कंट्रोल अवर माइंड बाय डूइंग आनापाना ड्यूरिंग मेडिटेशन, बट व्हेन वी आर नॉट मेडिटेटिंग हाउ आर वी टू ट्राई टू कंट्रोल? व्हेनेवर यू फाइंड दैट यू आर गेटिंग एजिटेटेड, इवन विद ओपन आईज यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद आनापाना, इट विल हेल्प यू। आनापाना इज अ वेरी गुड टूल टू हेल्प यू टू कंट्रोल योर माइंड। कल आपने कहा था कि मैं तुम लोगों से 2 कदम आगे हूँ। कुछ दिन पहले चला हूँ इसलिए कह दिया, भाई बुरा मत मान लेना इस बात से, हो सकता है कि हमसे कोई 4 कदम आगे हो, तो उससे क्षमा मांगता हूँ, तुम 4 कदम आगे हो, सुनने आए हो ना, तो इसलिए ये समझता हूँ मैं। कि मुझसे कुछ सीखने आए हैं तो जरूर मैं दो कदम आगे होऊंगा। आप जो रास्ता दिखाते हैं, क्या संसार में लोगों को मुक्ति पाने के लिए यही एक रास्ता है? बड़ा अजीब लगता है लोगों को जब कहें कि यही एक रास्ता है तो तुम बड़े नैरो माइंडेड हो। अरे रास्ता कोई सा भी हो जो हमको हमारे मानस के तल स्पर्शी गहराइयों तक पहुंचा दे और वहां के विकार निकाल दे तो मुक्त हुआ। ऊपर ऊपर के विकार निकाल दे और गहराइयों तक नहीं निकाला तो मुक्त कैसे हुआ? तो नाम चाहे विपश्यना हो चाहे कुछ और हो, जो भी साधना जो भी ध्यान हमारे शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को देख करके विकार निकालती है वो जड़ों से निकालती है, क्योंकि हमारे मानस की जड़ें शरीर की संवेदना के साथ जुड़ी रहती है 24 घंटे और वहीं विकार बनाती रहती है। तो इनको देखते देखते जो भी विकार अपना निकाल लेगा वो मुक्त हो जाएगा। अपने को विपश्यना न कहे, विपश्यना नाम मत ले, हमें विपश्यना नाम में क्या पड़ा है, पर अपनी जड़ों से विकारों को निकालो। आप लोगों को मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप 100% सही हैं? भाई आजमा के देखो, मैं कहूं 100% सही हूं तो तुम कैसे मान जाओगे, और मैं कहूं 100% सही नहीं हूं तो भाग जाओगे, फिर इस आदमी के पास क्या करें आकर के? अरे खुद अजमाओ, 10 दिन अपने जीवन के देखे देखो तो पता लगेगा। 10 दिन में इतना जरूर हो जाएगा कि ठीक रास्ता है, ये रास्ता मुझे मुक्ति तक ले जाएगा, इतना आश्वासन तो मिल ही जाएगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। लोगों से सुनने में आता है कि झूठ मत बोलो, सच पर चलो, क्या सिर्फ सत्य के रास्ते चलने से आदमी मुक्त नहीं होता? बोलने का सत्य एक है, वो अपने आप में कल्याणकारी है, लेकिन उस सत्य से ही मुक्त नहीं हो जाता। भीतर सच्चाई देखो, सत्य दर्शन माने भीतर क्या अनुभव हो रहा है, सचमुच क्या अनुभव हो रहा है, उसको साक्षी भाव से देखो, देखते देखते मुक्त हो जाओगे। कहा जाता है कि एक किसाई ठीक से तोल कर मांस बेचने की वजह से मुक्ति पा गया। जो बोलते हैं उनको पूछो, भाई हम क्या बताएं, उसने ईमानदारी से काम किया इतना तो ठीक, लेकिन जितना जितने कसाई का काम किया, मारने का काम किया, वो उस ईमानदारी की वजह से ये उसका धूल नहीं गया। हम अपने आसपास 10 नीम के पेड़ लगा लें और एक आम का पेड़ लगा लें तो उस एक आम के पेड़ की वजह से सारे नीम के खारापन निकल नहीं गया, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। ईमानदारी से काम करता है उसका उसको अच्छा पुण्य मिला, लेकिन जो हत्या करता है कसाई की तरह उसका उसको पाप, उतना उतना उसका दोष, उतना उतना उसका दुख रहेगा ही। जो स्वेच्छा से मर सके और शरीर में वापस आ सके वो क्या मुक्ति होती है? क्यों तो मरें और क्यों वापस आएं किसी के शरीर में, ये सारी चमत्कारों की बातें, धर्म को डुबोने वाली बातें हैं। किसी चमत्कार में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा मान लो किसी के पास ये विद्या आ गई कि अपने शरीर में से निकल करके दूसरे में चला गया, दूसरे से वापस आ गया, मिला क्या, विकार वैसे के वैसे हैं, निकले नहीं, तो कोई एक सिद्धि प्राप्त कर ली किसी तरह से भी कर ली, तो उन सारे जंजालों में पड़ना नहीं चाहिए, धर्म का उनसे लेन देन नहीं होता। सदगुरु का अर्थ होता है मुक्ति दिलाने वाला, सदगुरु का अर्थ होता है सत्य दिखाने वाला। अब सत्य दिखा दे और चलना तो अपना काम है ना, वो मुक्ति कैसे देगा? वो मार्गदाता है, मुक्तिदाता नहीं। कोई भी मुक्तिदाता होता ही नहीं, मार्गदाता हो सकता है, हम उस मार्ग पर चलेंगे हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति में क्या फर्क है? इसी जीवन में हमें मुक्त अवस्था की अनुभूति हो जाए तो जीवन मुक्त हुए। इफ आई वॉन्टेड टू आस्क यू क्वेश्चन इन द फ्यूचर, कैन आई राइट टू यू? इट विल बी अ बिग कन्फ्यूजन फॉर यू, बिकॉज अनलेस यू हैव टेकन द कोर्स ऑफ मेडिटेशन यू वोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई से, एंड इट विल टेक द होल लाइफ टू कीप ऑन एक्सप्लेनिंग यू इन लेटर्स। सो बेटर टेक योर कोर्स एंड देन राइट मी, यू विल गेट योर आंसर्स। Is not there the danger of creating hierarchy of spiritual attainments by giving posts like assistant teacher, junior assistant teacher, senior assistant teacher? Then who will teach you? You expect this teacher to keep on teaching everybody? Then I must have all those supernatural power to make 100 Goenkas out of 1 Goenka and keep on teaching here also in America and also. So there must be people. We have to train people. It is not just given like a gift to somebody. People are trained in the way, proper way as to how to teach. When problems come, how to face them, how to solve them. And that is how a teacher's training helps them to become junior assistant teacher or assistant teacher or senior assistant teacher. In our question answer time, you had said that J. Krishnamurti was liberated person. When I said, J. Krishnamurti was a saintly person, there is no doubt. I met him, I know. He himself had experienced something much deeper reality. But the difficulty was with him, no technique, no teacher, no technique, no teacher. That is why people got frustrated, many of them who came to me. So this is what people say as applied Krishnamurti. You have got a particular technique which does not bind you anywhere. You just keep on observing the reality of the moment from moment to moment, from moment to moment. This is the technique, which inspiration of which J. Krishnamurti got from the same source, and I also got from the same source. क्या प्राणायाम करके पीछे विपश्यना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. प्राणायाम अपने आप में एक शारीरिक कसरत है, उसका अपना लाभ है, लेकिन विपश्यना करते हुए उसको साथ नहीं जोड़ें. भगवत गीता में परमेश्वर पिता नारायण की स्मरण किए बगैर ध्यान का समाधि जन्म मृत्यु के चक्र से बचा नहीं सकता उल्लेख है, तो क्या विपश्यना ध्यान से प्राप्त हुए? गीता को विपश्यना करने के बाद पढ़ो तो नए अर्थ मालूम होंगे और बड़े कल्याणकारी अर्थ मालूम होंगे. How do you take the death? When it comes, I will take it smilingly. Let it come. What is love and respect? With Vipassana, you will learn what is real love. At present, what you call love is a commercial love. You expect something in return. And so long as you expect something in return, it is not love. Love is one-way traffic. You just give without expecting anything. And that Vipassana will teach you. अनित्य बोध के लिए क्या मन ही मन अनित्य का याद करना चाहिए? भूल कर भी नहीं करना चाहिए. कोई शब्द का प्रयोग ही नहीं हो. हम साधना कर रहे हैं और अनित्य 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 बोलते चले गए तो अनित्य एक मंत्र बन गया. उस अनित्य की वाइब्रेशन में एनगल्फ हो जाओगे, समाहित हो जाओगे. अपनी वाइब्रेशन कैसे देखोगे? समझना है बीच बीच में कि देखे सारा अनित्य है, बदल रहा है ना, बदल रहा है ना. बस रिपीट नहीं करना. किसी शब्द को रिपीट करते ही मंत्र बन जाएगा. Is Vipassana a revolution? Certainly, the biggest revolution of the mankind. Prashna kitne prakar se kiya jata hai? Anek prakar se prashna kar sakte ho, lekin chote karo. Lambe karoge to samay nahi hai itna. Manushya mein aisa kaun sa cheez hai jo manushya ko jeevan ka sanchalan karta hai? Uske jeevan ki apni chetna hai, chitta ka apni chetna hai, uski wajah se ye dhara behti hai. बच्चा अपांग पैदा हुआ पूर्व जन्म का फल है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? पूर्व जन्म का फल ही अपने आप में वैज्ञानिक कारण है. ये बात विपश्यना से बहुत साफ मालूम होने लगेगी. अगले जन्म में पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की चेतना नहीं होने से वो मनुष्य बुरा कर्म कर सकता है. विपश्यना द्वारा बहुत मालूम होगा किस तरह चेतना की धारा चलती है और जीवन इस जीवन से उस जीवन और किस प्रकार अपने साथ जो संग्रह करके लाई है उसमें जोड़ती है या निकालती है, जोड़ती है निकालती है, अपने बिहेवियर पैटर्न को बढ़ाई जा रही है या घटाई जा रही है, ये खूब महसूस होने लगेगा. मनुष्य का मृत्यु पहले से ही लिख कर आता है या उसके कर्म पर आधार होता है? जन्म के समय ही मृत्यु निश्चित हो जाती है. वो इसलिए कि किसी तीर को छोड़ें तो कितना खींच कर छोड़ा है, कितना बलपूर्वक छोड़ा है, उतनी दूर जाके गिरेगा. तो जन्म होते ही कितनी दूर गिरेगा जाकर के ये निश्चित प्रकृति कर देती है. लेकिन फिर भी जो बहुत ऊंची अवस्था पर पहुंचे हुए महापुरुष होते हैं वो उसमें चेंज कर सकते हैं अपने लिए. गीता के स्थित प्रज्ञ के लक्षण तथा एक विपश्यी के लक्षण में क्या अंतर है? जरा बन के देखो भाई, सारा अंतर समझ में आ जाएगा. एक ही है. स्थित प्रज्ञ का मतलब विपश्यना में स्थापित हो गया, प्रज्ञा में स्थित हुआ. विपश्यना प्रज्ञा ही और क्या है? अभी समझाया ना पांच दिनों तक. प्रज्ञा अपने भीतर प्रत्यक्ष ज्ञान को कहते हैं. और केवल प्रत्यक्ष ज्ञान तो हो नहीं स्थित प्रज्ञ से. का भाषा, का भाषा तो हम भी तो करते रहे बहुत वर्षों तक. मिला मिलाया क्या उससे? अपने आप अपने भीतर अपने अनुभव से जो ज्ञान जागे वो प्रज्ञा. और उसमें स्थित रहे, क्षण प्रतिक्षण स्थित रहे, तो वो व्यक्ति गीता में भी वैसा ही है और बुद्धवाणी में भी वैसा ही है. लेकिन वैसा होना चाहिए ना, वैसे हुए बिना कुछ अनुभव होता नहीं. आई अंडरस्टूड फ्रॉम द डिस्कोर्स दैट our life does not contain any soul. Don't worry about soul. If there is soul, दिस सोल विल बी वेरी हैप्पी इफ यू मेक योर सेल्फ मोर प्योर एंड इफ देर इज नो सोल वाई कैरी दैट बर्डन ओवर योर हेड फॉरगेट इट फॉर सम टाइम एंड वर्क एंड देन यू विल फाइंड व्हाट द रियलिटी इज. धर्म कुदरत का कानून है, प्रकृति का नियम है. क्रोध करने से व्याकुल हो जाते हैं, मैत्री करने से सोमनस्य वेदना होता है, शारीरिक आनंद की अनुभूति होती है. तो सिर्फ धर्म शब्द कहने से शुद्ध धर्म कैसे हुआ? जैसे समझाया था पहले दिन ही कि धर्म पहले दो तरह के माने जाते थे, कुशल धर्म अकुशल धर्म. होते 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 जो कुशल कुशल है उसको धर्म कहने लगे, जो अकुशल है उसको अधर्म कहने लगे. ये धर्म शब्द का इतिहास है. कहते हैं बुद्ध धर्म मध्यम मार्ग है. बुद्ध धर्म को मध्यम मार्ग क्यों कहा? बुद्ध धर्म और बौद्ध धर्म, इसके भेद को समझना चाहिए. कोई व्यक्ति बुद्ध हो गया तो उसका अपना एक स्वभाव है, बौद्ध हो गया तो उसका एक स्वभाव नहीं होता. 10 लाख बुद्ध होंगे, सबके अलग अलग स्वभाव हैं, तो बौद्ध धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती. जैसे हिंदू धर्म कोई मायना नहीं, बेमायने बात हुई. मुस्लिम धर्म बिल्कुल बेमायने बात हुई. तो बुद्ध धर्म माने वो धर्म ऐसे व्यक्ति का जो बुद्धत्व प्राप्त कर गया, मुक्त हो गया, तो उसका सारा जीवन संतुलित होगा, किसी एक ओर झुकेगा नहीं. अगर किसी एक ओर झुका है तो आसक्ति है उस ओर, तो बिल्कुल अनासक्त है. इसलिए मध्यम मार्ग से सीधा चलता है, ना इस ओर झुकाव है ना उस ओर झुकाव है. ये बुद्ध धर्म है, बुद्ध का स्वभाव है. जिस तरह सभी को जन्म से ही भोजन की प्यास होती है, वैसे धर्म की प्यास क्यों नहीं होती? क्योंकि जो भीतर स्वभाव बिगाड़ लिया, अपना आदिम स्वभाव, शुरू का स्वभाव, निर्मल चित्त का स्वभाव कायम रहता तो बात बिल्कुल भिन्न होती. लेकिन अनेक जन्मों से विकृत करते 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 उसका ऐसा स्वभाव बना लिया कि अब वो दूषित चीज़ को ही चाहता है, सही चीज़ को नहीं चाहता. बार 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 दूषित की ओर ही उसका मन जाएगा. उसी स्वभाव को पलटने के लिए, बिगड़े हुए स्वभाव को पलटने के लिए विपश्यना करना है. आपने कहा भारत का एक व्यक्ति ने बुद्धत्व प्राप्त किया और धर्म का प्रचार किया. बुद्ध तो नेपाल का है. बुद्ध सारे विश्व का है. नेपाल के लिए बड़े गौरव की बात है. इस धरती का क्या कहना. अरे ये हिमालय की धरती है. एक सिद्धार्थ गौतम क्या, न जाने कितने बोधिसत्व तपे हैं इस हिमालय पर. इतनी तेज वाइब्रेशन है धर्म की यहाँ. जो आदमी साधना करे वो जाने क्या करेगा कोई दूसरा देश इसका मुकाबला. ये तो बहुत बड़ा देश है, बड़ा महान देश है. देशवासी भी ऐसे महान बने तो कल्याण होगा. आज के विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वास्तव में ये दुनिया और जीव सारहीन है. और हम विपश्यना ध्यान से भी इसी बात को साक्षात्कार करते हैं. जो वैज्ञानिक जिस बात को कहते हैं वो बुद्धि के बल पर कहते हैं. आप विपश्यना द्वारा अनुभव के बल पर कहोगे, और अनुभव के बल पर कहना ही अपने आप को सुधार लेना हो जाएगा, नहीं तो केवल बुद्धि सुधर के रह जाएगी. इन ऑर्डर टू फुलफिल वंस ऑफिशियल एंड सोशल ड्यूटी एंट्रस्टेड टू हिम इन दिस प्रेजेंट डे लाइफ अटैच मोस्टली विद इम्प्यूरिटीज और डिफाइलमेंट्स ही मे हैव टू टेक सर्टन एक्शंस अगेंस्ट हिज विश. वेल सो लॉन्ग एज यू आर वीक आई अग्री यू टू कॉम्प्रोमाइज. दैट इज वाई Keep on practicing vipassana. As you gain strength, you will find that you are your own master, and slowly you will become master of the whole atmosphere around you. Now the atmosphere is overpowering you, then later on you will start overpowering the atmosphere. It takes time. Vipassana ne tamda lanji ko belo ko ayam le. Ye to barmi baat aayi beti, hum kaise barmi mein samjhayen, der hogi. Samatha chitta ko keval ekagra kar lena. समग्रता है विपश्यना में, समग्रता है समथ में, एकाग्रता है. किसी एक आलंबन पर हमारा चित्त टिक जाए तो समथ, शांत हो गया चित्त, वहां एक में डूब गया, इसलिए समथ हुई. और विपश्यना देख रहा, सर्वत्र देख रहा, सब कुछ देख रहा है, मन और शरीर का कैसे कैसे आपस में प्रतिक्रिया हो रही है, कैसे प्रभावित हो रहा है, कैसे विकार जाग रहे हैं, ये सारा प्रपंच देखने लगा तो विपश्यना हो गई. लोगों को देर होगी क्यों भाई, व्यवस्थापक क्या कहते हो? जो चीज बिना परिवार भूखे मर जाएगा वो पाने के लिए हर प्रयत्न किया लेकिन देने को तैयार नहीं. आप बताए कि जबरदस्ती ले लूं क्या? कहा है जबरदस्ती ले लो भाई,
अगर तुम्हारी चीज़ नहीं है तो ज़बरदस्ती काहे ले लो, मांगो, मिली तो बड़ी अच्छी बात और न मिली तो मुस्कराओ, नहीं मिली भाई क्या करें, इसके बिना काम करेंगे।
अन्याय का विरोध करना तभी संभव है जब अन्याय के प्रति क्रोध हो। बिल्कुल झूठी बात, समझ नहीं पाए इसलिए। अन्याय का विरोध करना चाहिए, बड़ी कठोरता के साथ करना चाहिए, पर जो अन्यायी है उसके प्रति प्यार जागना चाहिए, उसके प्रति करुणा जागना चाहिए। अरे बड़ा अबोध व्यक्ति है, इसे होश नहीं क्या कर रहा है, ये औरों की हानि नहीं करता अपनी भी हानि कर रहा है, इसका कैसे कल्याण हो, कैसे मंगल हो। लेकिन क्योंकि ये कठोरता की भाषा समझता है, दूसरी भाषा समझता नहीं, इसलिए कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा। भीतर तो मैत्री ही होगी। किसी देश या राष्ट्र को धर्म निरपेक्ष नहीं धर्म सापेक्ष होना चाहिए, ये तो आपने ठीक ही कहा है, लेकिन नेपाल को तो केवल हिंदू धर्म सापेक्ष बनाया है। जिस दिन ये बात लोगों की समझ में आ जाएगी, आज तो कठिनाई ये है, यहीं की बात नहीं है, भारत अपने आप को धर्म निरपेक्ष कहता है, क्या धर्म निरपेक्ष हुआ, हम कहते हैं धर्म सापेक्ष है, संप्रदाय निरपेक्ष है। जिस दिन संप्रदाय और धर्म का भेद मालूम होगा उस दिन ये सारे जंजाल अपने आप दूर हो जाएंगे। धर्म राज्य धर्ममय हो इसमें दो मत नहीं, राज्य संप्रदायमय हो तो कठिनाई पैदा कर देगा। ये बात समझ में आनी चाहिए लोगों को, और धर्म सिखाएगा धीरे धीरे, धर्म जागेगा, ये बात खूब समझ में आने लगेगी। ये आंदोलनों से नहीं आएगी, झगड़े फसाद से नहीं आएगी, धर्म जागेगा तो अपने आप आ जाएगी। यू से एसेंस ऑफ एवरी रिलीजियस लीडर सेइंग इज सेम, देन व्हाई डिड कृष्णा इंस्पायर अर्जुन फॉर ए बिग ब्लड शेडिंग, लेट कृष्णा आंसर दैट, व्हाई शुड आई आंसर। बट इन गीता देर आर श्लोकस विच आर प्योर विपश्यना प्योर धम्म, एंड आई एडमायर दैट, बट देर आर समथिंग आई मे नॉट एडमायर दैट। So I am not the advocate of Gita, nor the advocate of Krishna, nor the advocate of Buddha. Wherever there is pure Dhamma, I appreciate it and try to follow it. Which religion do you follow? Religion को इतना महत्व दिया, हम धर्म के रास्ते चलने वाले हैं, हम अरहंत नहीं बने अभी तक, बुद्ध नहीं बने, लेकिन धर्म के रास्ते चलने वाले हैं, तो कदम कदम चल रहे हैं, जहाँ से शुरू किया है उससे जरूर कुछ आगे बढ़े हैं, बस धर्म का ही रास्ता है, किसी संप्रदाय का नहीं। यदि कोई आदमी चोरी डकैती हत्या बलात्कार आदि पाप करके अंत में विपश्यना में आएगा तो क्या उसे बोधि प्राप्त होगी? अंगुलीमाल ने 999 हत्याएं की ना, और विपश्यना में ही आया, ऐसे बुद्ध ने सिर पर हाथ नहीं रख दिया कि आज से तो मुक्त हो गए, विपश्यना ही करनी पड़े, सारा कुछ धो देता है, विपश्यना का ऐसा प्रभाव है सब धो देगा। बीमार व्यक्ति को बचाने के लिए उसका रोग को जीव को मारना क्या पाप है? तुम्हारे चित्त की चेतना कैसी है उसके अनुसार बात होती है। चित्त की चेतना मारने की है तो अपने मन को दूषित किया, अन्यथा नहीं। मैं पहले से ध्यान करता आ रहा हूं, इसका नतीजा ये निकला कि अनजाने में ही कुछ चक्रों का भेदन हो गया। अरे कोई चक्र वक्र होता नहीं भाई, इन चक्रों में मत पड़ो, ये नर्व सेंटर्स हैं और कुछ नहीं है, और सेंसेशन सारी जगह होती है, नर्व सेंटर में ज़्यादा अच्छी तरह मालूम होती है। मालूम हो विपश्यना करना सीख जाओगे, उसे समता से देखोगे, नहीं विपश्यना करोगे तो व्याकुल हो जाओगे, अरे मेरी कुंडली नहीं जाग गई, मेरे चक्र जाग गए, न जाने क्या हो जाएगा का भय अपने सिर पर सवार करके अपनी हानि कर लोगे। विपश्यना करोगे तो यह भय अपने आप दूर हो जाएगा। यदि हम किसी बात पर राग द्वेष पैदा नहीं किया तो क्या महत्वहीन हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो जाओगे, बिना राग और बिना द्वेष के भी बहुत अच्छा जीवन जियोगे, जीना आ जाएगा, क्योंकि ऐसा जीवन कभी जी के देखा नहीं इसलिए जानते नहीं। इट हैज बीन 5 years सिंस आई अटेंडेड लास्ट शिविर एंड आई हैवंट बीन कंटिन्यूइंग रेगुलर प्रैक्टिस, दिस इज द बिगेस्ट इफेक्ट, जस्ट कमिंग टू ए कोर्स एंड नॉट प्रैक्टिसिंग एट होम वोंट गिव यू द प्रॉपर रिजल्ट्स, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मेक ए स्ट्रांग डिसीजन That going back home, I will have my daily sittings. कितने लोग शादी नहीं करते, स्त्रियां माँ नहीं बन सकती, पुरुष पिता नहीं बन सकता, तो यह प्रकृति कैसे चलेगी? अरे बाप रे, प्रकृति को चलाने की इतनी चिंता है तुम्हें? अपने दुखों के तो बाहर निकलो, तुम सारी प्रकृति का इतना बड़ा बोझ काहे सिर पे उठाए फिरते हो? दुनिया विपरीत शक्ति पर चल रही अड़ी है, सुख है तो दुख है, घाम है तो छाया है, इसीलिए कहते हैं विपरीत बातें हैं ही, दुख है तो अवश्य कहीं ना कहीं सही सुख है, ये दुख है यही इस बात का सबूत है
कि कहीं ना कहीं सही सुख है, उसी की खोज अपने भीतर करनी होगी और सचमुच सुख क्या है उसकी अनुभूति हो जाएगी।
देर आर मैनी पीपल अमंगस्ट अस हैविंग मेडिटेशन, सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मंक्स एंड दोज पीपल?
वेल, मंक्स गेट मोर टाइम बिकॉज दे गॉट नो अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ए हाउस होल्डर इज आस्ट टू मेडिटेट जस्ट मॉर्निंग 1 hour, इवनिंग 1 hour एंड देन बी बिजी विद देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। मंक्स हैव गॉट मोर टाइम, सो दे आर मोर फॉर्चुनेट कंपेयर्ड टू अस।
भगवान के निर्देशन में रह रहे भिक्षुओं को विपश्यना शब्द विद्या का आस्वादन करवाने के लिए हमें क्या करना होगा?
तुम पहले आस्वादन करो भाई, दूसरों को आस्वादन कराने की बात अभी नहीं, स्वयं करना चाहिए पहले।
भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म का वाता बताया, क्या ये सत्य है?
जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा वो कहते हैं कि मैं जान कर जान तो पश्चतो भगवा धम्मं देशेसी। वो किसी किताब की बात नहीं कर रहे, वो किसी परंपरा की बात नहीं कर रहे, अपनी अनुभूति से जो जाना वही बताया और लोगों से यही कहा कि तुम भी जानो और तब मानो, मेरे कहने से मत मानो। बुद्ध ने कहा इसलिए मान लोगे तो क्या मिलेगा, केवल मान के रह जाओगे ना, और उसी को अनुभूति पर उतार लोगे तो बड़ा कल्याण हो जाएगा। तो बुद्ध की बताई हुई बात जब तक अनुभूति से नहीं जान लेते तब तक उसको मान लेना चाहिए, ऐसा हम नहीं कहते।
मन के अंदर का अशांति की भावना दूर होती है, लेकिन अशांति के वातावरण में रहते हुए यही सीखोगे कि चारों ओर अशांति का वातावरण है फिर भी भीतर से हम कितने शांत हैं। पानी में कीचड़ में कमल उगा है, चारों ओर कीचड़ है, पानी है, लेकिन वो निर्लिप्त है, ऐसा होने लगेगा। विपश्यना इसी काम के लिए है। विशुद्ध भिक्षु संघ स्थापना के लिए हम उपासक उपासिकाओं को क्या करना चाहिए? अच्छे उपासक बनना चाहिए, अच्छे उपासिकाएं बननी चाहिए। गृहस्थ ही अच्छे नहीं होंगे तो भिक्षुओं को क्या दोष दो? भिक्षु आकर कहां से निकले? गृहस्थों में से तो निकले, और गृहस्थ सारे के सारे गए गुजरे, और ये उम्मीद करें कि भिक्षु तो बड़े अच्छे हो जाए? तो भाई पहले अपने आप को सुधारो, तो हम ही में से जो निकलेंगे भिक्षु बनने के लिए वो बहुत अच्छे होंगे, आदर्श होंगे। थाउजेंड्स ऑफ मैन वर्शिप आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड डेटीज विदाउट ऑब्जर्विंग और एक्सपीरियंसिंग द रिलीजियस मेरिट्स। वेल, देर आर मैनी हु आर फिट फॉर किंडरगार्टन एंड लेट देम कीप ऑन वर्किंग दैट, बट ऑल द पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन शुड नॉट लिव इन द लाइफ of kindergarten, let them progress. There are many who are fit to progress further, let them progress further. Don't remain always in this nursery or kindergarten. आपका विपश्यना का संदेश मुस्लिम राष्ट्रों में भी चला है कि नहीं?
मुस्लिम राष्ट्रों के लोग आए हैं, और ये जो अभी बात हो रही थी सहायक आचार्य इत्यादि की, तो दो लोग जो मुस्लिम हैं वो सहायक आचार्य हैं, और तीसरे को तैयार कर रहे हैं। हर संप्रदाय के लोग इस विद्या को सीख करके पकते हैं तो सिखाने लायक होने लगते हैं, समय लगता है।
क्या है भाई, सारी रामायण सुन ली और सीता कौन थी तो क्या समझाएं हम? विपश्यना करने का टाइम में संवेदना होगा, उस वक्त संवेदना को देखें या आनापान देखते रहें? जब संवेदना होती है तो संवेदना को देखो, उसके अनित्य स्वभाव को समझो, ये विपश्यना ही कल्याण करेगी। जब मन बहुत भागता हो तो फिर आनापान पर आ जाओ। मानव की इच्छा शक्ति से ही बारंबार जन्म लेना पड़ता है। केवल इच्छा शक्ति नहीं, उसके भीतर जो वासना रह जाती है, कर्म संस्कार रह जाते हैं, वो जन्म के कारण होते हैं। मैं एक शिविर ले चुकी हूँ मगर जब ध्यान करूँ तब मन भटकता ही रहता है। जब जब देखो मन बहुत भटकता है तो फिर आनापान पर आ जाओ। इसलिए दो विद्या सिखाते हैं, एक सांस को देख कर मन को टिकाने की विद्या, एक संवेदना को देख के मन को निर्मल करने की विद्या। अगर ये निर्मल करने वाली विद्या कमजोर पड़ गई तो फिर इस पर आ जाओ, कुछ देर आनापान करो, 10 मिनट 15 मिनट, इसके बाद भी प्रश्न शुरू कर दो। इफ गॉड बुद्धा हैड नॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन वायलेंस, व्हाट वुड द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड? मियरली द टीचिंग ऑफ बुद्धा अबाउट नॉन वायलेंस डस नॉट हेल्प। It is for the people to become non-violent, and that is only possible if you go to the depth of your mind and you understand how non-violence gives you so much of peace and harmony, and that will inspire you to see that everybody experiences this peace and harmony. बहुत स्पष्ट नहीं है भाई, किसी भी विषय में दिमाग एकदम कहता है, मन उसका बात करता है, पर बात कुछ हो रही होती है। वो इसीलिए कि मन काबू में नहीं है, बुद्धि तो कहती है, दिमाग कहता है कि यही बात अच्छी है, लेकिन मन क्योंकि अपने पुराने स्वभाव का गुलाम हो गया, इसलिए वो अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करता है, बुद्धि की बात सुनता नहीं। हमें केवल मुक्ति ही चाहिए या जीवन मुक्ति भी? विपश्यना करोगे तो दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। जीवन मुक्ति माने इसी जीवन में मुक्ति की अनुभूति। भारत के झंडे के बीच में किसका नाम लिखा है? भारत के झंडे के बीच में चक्र है, नाम वाम तो देखा नहीं भाई कोई। आपने अभी अभी कहा विपश्यना से पूर्व जन्म ज्ञात होता है। बहुत ऊंची अवस्थाएं हैं, उनकी बात नहीं करें। अभी तो जितना जितना अनुभव कर सकें उतना शुरू करें। देखो कोई छोटा प्रश्न हो तो देखो।
गर्भधान की अवस्था में बच्चों को?
हाँ, गर्भधान की अवस्था में, गर्भधान की अवस्था में धर्म सुनने लायक बच्चों को क्या किया जाए? लोग पूछते हैं कि बच्चे को किस उम्र में विपश्यना सिखानी चाहिए, तो हम कहते हैं कि जन्म के पहले ही सिखानी चाहिए। हर गर्भवती माता को शिविर में से गुजरना चाहिए, तो उसका परिणाम ये होता है कि बिना जन्मा हुआ बच्चा जो अभी पेट में ही है, उसको इन तरंगों की अनुभूति होने लगती है, उसमें धर्म का बीज मिल जाता है और जीवन उसका बड़ा सुखी हो जाता है। पश्चिम देशों में अब इस बात की बड़ी चर्चा होने लगी, तो गर्भवती माताएँ बहुत आती हैं शिविरों में, और जब उनको संतान होती है तो आए गोटे धम्मा बेबी ना हो, आए गोटे धम्मा बेबी, इतनी खुश होती हैं। और सचमुच बच्चे भी, प्रसव भी बहुत कम पीड़ा के साथ होता है, और क्योंकि सहन शक्ति बढ़ जाती है और बच्चे भी बहुत शांत होते हैं। गत वर्ष मैंने एक विपश्यना शिविर में भाग लेने का मौका मिला। विपश्यना ध्यान के अभ्यास में चित्त और शरीर का गहरे संबंध की अनुभूति के सिलसिले में सिर से पांव तक संवेदना का अभ्यास होता है। इससे चित्त निर्मल होने का क्या संबंध है? केवल संवेदना मिलने से चित्त नहीं निर्मल होता, संवेदना तो किसी प्रकार भी मिल जाएगी। संवेदना के प्रति जो रिएक्शन करते थे, अब रिएक्शन नहीं कर रहे हो। विपश्यना यही सिखाएगी, संवेदना सुखद है उसे जान रहे हैं लेकिन राग नहीं जगाते, संवेदना दुखद है उसे जान रहे हैं लेकिन द्वेष नहीं जगाते। यूं निर्मल हो रहा है, हम जो रिएक्ट करके उसको मैला कर रहे थे वो मैला न करने का स्वभाव बना रहे हैं। अब गत चार दिनों से यहाँ प्रवचन सुना। ओ देखो भाई, इसको अनुवाद करो। क्या विपश्यना के पास आज की दुनिया के प्रमुख समस्याओं का समाधान है? मनुष्य से बढ़कर दूसरी कोई समस्या नहीं, हर व्यक्ति एक समस्या है। व्यक्ति अपने भीतर से समस्याओं का समाधान कर लेगा तो देखेंगे कि समाज पर उसका असर पड़ना शुरू हो गया, सारा का सारा जंगल मुरझा गया, पीला पड़ गया, और हम चाहते हैं कि फिर हरा भरा हो जाए, तो उसके लिए एक एक पेड़ की जड़ में हमको पानी देना पड़ेगा। एक एक पेड़ हरा होगा तो सारा का सारा जंगल हरा हो जाएगा, सारे समाज को, सारे विश्व को, उनकी सारी समस्याओं को समाधान करने का बोझ सिर पर लेके रखेंगे और व्यक्ति को सुधारेंगे नहीं, कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए विपश्यना व्यक्ति का केयर करती है, एक एक व्यक्ति को सुधारने का काम करती है। क्या था? मेरा बचपन से ही आदत ये पड़ गया कि देवी देवता और मंदिर देखने की प्रार्थना करना। अरे क्या बुरी बात है, अपना देवी देवताओं से कोई झगड़ा है? वो बेचारे अपनी जगह, उनको नमस्कार करें, उनको गुणों को याद करें कि भाई कोई तो अच्छा गुण होगा तो ही तो देवी बना, देवता बना, ऐसा गुण मुझ में भी आए तो मैं इस देवी देवता का सही माने में सत्कार कर रहा हूँ, और वैसे ही खाली धूप दीप जलाया और गुण उसके एक नहीं धारण किए तब किस काम की बात हुई, धर्म की बात नहीं हुई। तो देवी देवताओं से झगड़ा नहीं करना, उनके प्रति द्वेष नहीं करना। भाई इसका जवाब तो प्रबंधक देंगे, वो कहते हैं कुछ लोगों के लिए सीट रिजर्व है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। सहिष्णुता सीखे, शांति। भाई किसी कारण से यह हुआ होगा कि जिनको कार्ड देके इनवाइट किया, अगर उनको जगह नहीं होगा तो वो बुरा मानेंगे, और जो बिना कार्ड के आए हैं उनको भी जगह तो होनी चाहिए। इस कारण से हुआ होगा, हम नहीं जानते, ये तो व्यवस्था वाले जवाब देंगे, विपश्यना सिखाने वाला क्या जवाब देगा। आपने कहा मच्छरों से बचने के लिए मच्छरों को मारे नहीं। कुछ रिपेलेंट निकलेंगे, अभी
जैसे जैसे विपश्यना फैलेगी वैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये कम होते चले जाएंगे, रिपेलेंट ज़्यादा होंगे, तो ये जंतु हमें दुख देते हैं दूर होते चले जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, सबसे बड़ा कल्याण होगा। और है लोग थक तो नहीं गए, डॉक्टर्स रिस्ट्रिक्टेड मी फ्रॉम अर्ली अवेकनिंग एंड एडवाइज मी टू हैव साउंड एंड सफिशियंट स्लीप एज वेरी एसेंशियल, आई मस्ट टेक मेडिसिन ट्वाइस डेली फॉर माई फोकल एपिलेप्सी। यस, यू विल बी अलाउड टू टेक यूर मेडिसिन, जस्ट डिस्कस विद द असिस्टेंट टीचर हु इज कंडक्टिंग द कोर्स एंड ही विल एडवाइज यू व्हाट टू डू। इन एनी डिजीज, इज एनी डिजीज पॉसिबल ड्यू टू चाइल्ड हुड सेक्शुअल क्रेविंग? वेल, द चाइल्ड is not responsible for that, the parents are responsible. The entire atmosphere of the house is such, full of this mad sexuality which enters in the child, and then naturally the child becomes more and more unhappy, and Vipassana will help. The parents should come out of their own misery first. Daydream kya hai aur kyun hai? Vipassana karne baithoge to malum hoga kis tarah se daydream chalta hai, usko dekhte dekhte yun bhi samajh mein aayega ye kyun chalta hai और कैसे इससे छुटकारा हो सकता है। इज इट पॉसिबल फॉर पर्सनल मीटिंग विद यू? क्या करोगे हमसे पर्सनल मीटिंग? विपश्यना में आगे करो तो कल्याण की बात होगी, ऐसे मिलकर क्या मिलने वाला है? आ जाओ 10 दिन, बड़ा कल्याण होगा। हमसे मिलने में नहीं होगा कल्याण, धर्म से मिलने में होगा। अपने भीतर धर्म का दर्शन करोगे, उसके साथ मेलजोल होगा तो खूब कल्याण होगा, खूब कल्याण होगा। चित्त को शुद्ध रखने से मनोबल प्राप्त होते हैं, मनोबल पाने से आदमी हर दुख की पीड़ा सहन करने की शक्ति प्राप्त करता है। विपश्यना यही सब करवाती है, मनोबल खूब बढ़ेगा। मैं पिता हूं लेकिन मुझे मालूम है कि इससे मेरे परिवार को दुख पहुंचता है। ओ, मैं छिप के पिता हूं, जो अपराध हुआ सो हुआ, उस अपराध को लेकर के रोते रहना, उस अपराध को और अधिक पुष्ट करना है। जो अपराध किया, गलती किया, अपने से किसी बड़े के सामने जाकर के उसका उद्घाटन कर देना चाहिए, मुझसे ये अपराध हुआ, और अपने से बड़े के सामने ये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि आज के बाद, इस समय के बाद ऐसा अपराध मुझसे नहीं होगा। ऐसा मनोबल जगाओ, जो पहले अपराध किया उसकी अपराध की गंती के मारे व्याकुल रहोगे तो कल्याण होने वाला नहीं है, और विपश्यना करोगे तो पहले जो भी अपराध किया वो अपने आप भूल जाएगा। व्हाई डू यू थिंक अवर गुरुज एंड भिक्खुज have kept us so far away from this most valuable technique? Nobody is responsible for that. What poor bhikkhus will do, what your gurus will do, the technique was lost. From last 2000 years, this technique was totally lost. We are fortunate that the neighboring country maintained it in its pristine purity, from teacher to pupil, from generation to generation, very few people. Most of the country was involved in all kinds of rites and rituals, but only few people maintained Vipassana in its original purity. That's why you got it now. We must be thankful and grateful to them. Be happy. Sukhi ho.